ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ऊचुः पौराणो गोप्यस्तपः किं चरन्मः ज्याह्येतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ। भगवान श्रीकृष्ण अपने भाई श्री बलराम एवं गोपों के साथ मथुरा के राजपथ पर चल रहे हैं और स्त्रियां उनका दर्शन कर परमानंद में मग्न हो रही हैं तथा अन्य मथुरावासी भी भगवान के दर्शन से अतिशय सुखी हो रहे हैं तथा ब्राह्मण गण आशीर्वाद दे रहे हैं। मथुरा की नारियां विशेष करके श्री गोपियों के विषय में बातचीत करती हूँ। ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तपः किं चरन्मः या हेतावनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सव। एतौ नरलोक महोत्सव ये अर्थात कृष्ण और बलराम समस्त मनुष्य समाज के महाउत्सव। उत्सव का अर्थ है आनंद। महाउत्सव महोत्सव एतौ महोत्सव नरलोक जितने भी मनुष्य हैं इस जगत में सबके लिए कृष्ण बलराम महोत्सव। नरलोक महोत्सव श्रीकृष्ण और बलराम मूर्तिमान उत्सव है। उत्सव का अर्थ है सुख। तो ऐसे मनुष्यों के महान सुख स्वरूप है कृष्ण और बलराम को श्री गोपियां अनुपश्यंती निरंतर देखती हैं। गोपियों ने कौन सा तप किया था? तपह आचरण। तपह का अर्थ है शुभ कर्म, दान, जप, तपस्या। कौन सा ऐसा पुण्य किया था कि भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं, कृष्ण और बलराम का दर्शन करती हैं? भगवान का दर्शन करना, उनसे भेंट करना, यही सबसे महान फल है सब प्रकार के सुकृतों का। जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है और उसे ऐसा सौभाग्य मिले कि भगवान से उसकी भेंट हो और उनको घर आकर देखे, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने कई जन्मों में बहुत बड़ा तप किया था, शुक्र किया था, वेदों का अध्ययन किया था, प्राणियों का दुख हरण किया था, इसने दान दिया था, इसने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, पितरों को तृप्त किया था, देवताओं का हित किया था, देवताओं की पूजा किया था। ये सब बातें उसी समय पता चलती है। फल से कारण का अनुमान किया जाता है। कृष्ण बलराम का दर्शन ही सब प्रकार के सुकृतों का महाफल है। इसीलिए मथुरा की स्त्रियां तैयारी साथियों गोपियों ने कौन सा तप किया था जिससे श्री कृष्ण बलराम को अनुपस्थित निरंतर देखती रहती। इस प्रकार से मथुरा की स्त्रियां और पुरुष भी आपस में कृष्ण बलराम के महातेज को सौंदर्य को देखकर परस्पर बातें कर रहे थे और बहुत बड़ी भीड़ चल रही थी, साथ साथ में समुदाय चल रहा। उसी समय भगवान ने लीला किया, उसको हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। रजकम कम शिदाया कम रंग कारम गदाग्रज दृष्ट्वा याचतवा सांसी भवतांगुत्तमानि च। कंचित रजकम, कोई रजक जो रंगकार का काम करता था, वह बहुत ही उत्तम श्रेणी के वस्त्र ले जा रहा था और उसके साथ कई लोग थे। वो समस्त रजक का सरदार, रजक का अर्थ होता है वस्त्र धोने वाला, इसको धोबी कहते हैं, लेकिन वह सामान्य धोबी नहीं था, वह रंगकार, रंगकार, रंग का अर्थ है कलर, कपड़ों को रंगता था रजक। सभी समझते हैं हमें हिंदी में रजक का, और कपड़ा रंगता था किसका, कंस के परिवार का या कंस के मिनिस्टरों का राजकीय वस्त्र धोता था और रंगता था। इसका खास कोई परिचय नहीं दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कंचित रजकम आयांतम, कोई रजक आ रहा था। कंचित का अर्थ है कोई, शायद सुखदेव गोस्वामी उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत बुरा व्यक्ति। लोग कहते हैं कि अरे उतना बुरा आदमी है उसका नाम मत लो, शायद सुखदेव गोस्वामी भी उसका नाम नहीं ले, क्योंकि भगवान की याचना को वह बुरा नहीं किया, दुर्वचन बोला, इसलिए सुनाम नहीं रखे। कंचित रजकम आयाम आ रहा रंग कारण, वह वस्त्रों को रंगता था। दृष्टवा उसको देखकर गदाग्रज अयाचक, गद के अग्रज याचना किए, वसुदेव जी के पुत्र का नाम है गर्द, वो भगवान कृष्ण से छोटा था इसलिए कृष्ण को गदाग्रज, गर्द का अग्रज, कृष्णाग्रज तो बलराम जी थे, कृष्ण से भी पहले जन्म लिए, और कृष्ण जन्म लिए थे गर्द से पहले, इसलिए गदाग्रज। गद के अग्रज श्री कृष्ण उससे रजक को देखकर अति उत्तमानी भवतानी वासांसी अयाचक, वासांसी अयाचक वस्त्र मांगे, कैसे वस्त्र, उत्तमानी भवतानी और च। उत्तम का अर्थ है क्वालिटी की दृष्टि से बहुत उत्तम, फाइन वस्त्र, मतलब निर्माण ही उनका हुआ था बहुत उत्तम ढंग से, बहुत अच्छे सूत्र लगाए गए थे, अच्छे बुनकरों के द्वारा बुने गए थे, तो उत्तम। चौकार थे बहुत रंग भी फर्स्ट क्लास का था, रंगे गए थे बहुत अच्छे। और भवतानी, भवतानी का अर्थ है बिल्कुल धोए हुए, नए वस्त्र भी धोए जाते हैं, धोए हुए थे और आयरन किए हुए, बहुत अच्छे थे वस्त्र, देख करके भगवान को इच्छा हो गई वस्त्रों और अयाचक श्री कृष्ण ने मांगा वस्त्र। किस तरह से मांगा, सुखदेव गोस्वामी कहते देह्या वयो समुचितान अंगवासांसि चारहतः भविष्यति परम श्रेयो तापुस्ते नात्र संशयः। हे अंग, हे प्रिय रजक, अवयव वासांसि देही, हम दोनों को वस्त्र दो। यद्यपि भगवान के साथ अन्य बहुत से गोप चल रहे थे, फिर भी सबके लिए मांगने में संकोच हुआ, तो कहते हैं हम दोनों को वस्त्र दो, अवयव वासांसि देही, क्यों दो के लिए ही मांगे। और अंग संबोधन की, अंग का अर्थ होता है प्रिय, इस अंग्रेजी में तो किसी को भी माई डियर खिलाना कहते हैं, ये वो माई डियर माई डियर, तो अंग्रेजी संस्कृत में अंग शब्द का है, अंग मतलब हमारे स्वरूप, हमारे प्रिय है, हमारे प्रिय रजत अवयो वसंस वस्त्राणि दे समुचितानि, हमारे लायक जो है। समुचितानी का अर्थ है कि हम बहुत वस्त्र नहीं मांग रहे हैं, हम केवल एक से वस्त्र चाहिए, और वस्त्रों में भगवान धोती और दुपट्टा मांग रहे हैं, बस इतना ही। समुचित कई अर्थ समुचितानी वसन से, तो आप सोच सकते हैं भगवान के लिए समुचित वस्त्र क्या माना जाएगा। अवयव समुचितानी ही वसन से दे, उनको उचित वस्त्र दो। यह उचित से तात्पर्य है कि तुमको जो उचित लगे, हमको हमारे लायक धोती दुपट्टा या और भी सब दो। उचितानी शब्द से भगवान मानो अपने मन का हट है दूर करते हैं, बोल रहे हैं कि हम हट नहीं कर रहे हैं और हम बहुत कीमती वस्त्र भी नहीं मांग रहे हैं, हम उचित वस्त्र मांग रहे हैं। लेकिन यदि आप ये समझते हैं कि हमको वस्त्र की आवश्यकता है इस शहर में, शहर के लायक नगर के लायक हमारा वस्त्र नहीं है, तो आप ऐसा समझ करके हम दोनों को वस्त्र दीजिए। अर्हतः, क्योंकि हम योग्य हैं, भगवान अपने मुख से कहते हैं कि हम वस्त्र पहनने के योग्य हैं, या हमें आवश्यकता है, आप दीजिए। भविष्य की परम श्रेय दातु से मात्र संशय, ते दातु यदि आप दे देते हैं तो आप दाता का तत्काल ही बहुत बड़ा श्रेय होगा, कल्याण होगा। हमारा स्वभाव है कि हमको जो देता है उसका बहुत बड़ा कल्याण करता है, ये भगवान कह रहे हैं। तापुस सेना प्रशंसा, इसका अर्थ यह है कि भगवान उसको देने के लिए उकसा रहे हैं, यदि आप हमको देंगे तो वैसे हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, परंतु पैसा से कोटि गुना अधिक मैं आपका उपकार करूंगा यदि वस्तु दे दिए। न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, आप संशय मत करो कि झूठ बोलकर वस्तु ले लिया और कुछ दिया नहीं। भगवान अति भगवान है, कितना शालीन भाषा बोलते हैं। दातु होते देने वाले आपका परम श्रेय भविष्य, परम श्रेय भविष्य, बहुत श्रेय। क्या क्या श्रेय है इस संसार में, जैसे धन प्राप्त होना, या आयु, विद्या, यश, और दूसरे जन्म में स्वर्ग लोक की प्राप्ति, या भगवान के धाम की प्राप्ति, ये श्रेय कहे जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य श्रेय चाहता है, भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि यदि आप वस्त्र मुझे देंगे तो आपका परम श्रेय होगा, तो देने में आपको घाटा नहीं है, ये कहने का आशय है, बहुत बड़ा लाभ है, इस तरह से बोल रहे हैं। और शायद उसने कुछ ऐसा संशय किया होगा, तो भगवान कहते हैं अत्र न संशय, मैं जो बात कह रहा हूं कि आपका बहुत बड़ा हित होगा, इसमें संशय नहीं। इसका आचार्य लोग फिर विपरीत अर्थ करते हैं, ते अदातु, यदि आप नहीं वस्त्र देते हो तो तुम्हारा श्रेय न भविष्य, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नौ को वहां बैठा कर पाते हैं और तातु के पहले अ लगा कर बोलते हैं, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार उसमें लग सकता है। भविष्य की परम श्रेय और दातु से न प्रसन्न, अथवा इसका यह अर्थ है कि तुम नहीं भी दोगे तो तुम्हारा परम हित होगा, इसमें संशय नहीं है। तो भगवान मारेंगे तो वैकुंठ जाएगा, कहने का आशय ये है तुम नहीं दोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। पर हम लोगों को मूल अर्थ लेकर के ही चलना है, यदि आप हमको वस्त्र देंगे तो आपका बहुत बड़ा हित होगा, अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। और भगवान के आर्डर नहीं दिए, आज्ञा नहीं दिए। सुखदेव गोस्वामी कहते स याचित भगवता परिपूर्ण न सर्वतः, भगवान सर्वतः परिपूर्ण है, सब प्रकार से किसी भी दृष्टि से देखिए तो भगवान पूर्ण है, धन में, धन से, बल से, जस से, कीर्ति से, सबसे पूर्ण है। समग्र सौभाग्य की लक्ष्मी, समस्त धन की अधिष्ठात्री देवी जब उनके चरणों की दासी है, सेवा करती है, तो कहना ही क्या, हम सब तरह से परिपूर्ण है। पर ऐसे परिपूर्ण छह ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान याचना किए, उस रजक से, धोबी से भगवान मांगे हाथ जोड़ कर, जैसे लगा कोई बेचारा लड़का गांव से आया है, मांग रहा है कि भाई वस्त्र दे दीजिए और आपका बहुत बड़ा हित होगा, तो कम से कम उस दुष्ट को पूछना चाहिए था कि क्या हित करोगे, क्या दान दोगे, है ना। तो पूछा होता तो भगवान और स्पष्ट किए होते कि ये दूंगा वो दूंगा, लेकिन वो कुछ पूछा नहीं। स याचित भगवता परिपूर्ण सर्वतः, अब सुखदेव गोस्वामी उस धोबी को गाली देना चालू करते हैं, कथा कह रहे हैं श्री भगवान ने मांगा जो सब तरह से परिपूर्ण है, परंतु वह वस्त्र दिया नहीं, उल्टे डांटने लगा, फटकार करने लगा। कभी देखे हो ऐसा मुख, ऐसा वस्त्र कभी देखे हो, मांगने में शर्म नहीं लगती, उसका काल निकट आ गया, नहीं देना था नहीं देता, कह देता कि बेटा ये वस्त्र राजा का है, मैं उसका सेवक नहीं दे सकता, ये व्यवस्था है। तब भगवान कुछ और बात कहते कि मैं देख लूंगा तुम्हारे राजा को दे दो। भगवान कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उसने विचार ही नहीं किया, वास्तव में मरने का समय उसका आ गया। जब किसी व्यक्ति के मरने का समय आता है तो वो बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगता है, बकने लगता है, समझना चाहिए कि अब मरने वाला है। हिरण्यकश्यप के सामने जब प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि हमारा बल आपका बल, भगवान है वही जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, और भगवान किसी के शत्रु नहीं है, वास्तव में शत्रु है अपना न जीता हुआ मन, इंद्रियां शत्रु, तो आप अपने असली शत्रुओं को जीतिए, भगवान से प्रेम कीजिए, क्यों भगवान को अपना बैरी समझते हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप कहता है समझ गया तुम्हारे मरने का समय आया, क्योंकि तुम्हारे मुख से बहुत उत्पटांग बात निकल रही है। हिरण्यकश्यप के लिए बहुत उत्पटांग बात थी कि कोई विष्णु की महिमा उसके सामने का है, स्पष्ट कहा कि तुम मरना चाहते हो, लेकिन वास्तव में मरने का समय हिरण्यकश्यप का आ गया, वह असली में उत्पटांग बोल रहा है, और बस उसके 10 मिनट के बाद ही भगवान खंभे से प्रकट हुए और उसको मार दिए। सातवें स्कंद भागवत में लिखी गई थी बात। तो उस रजक के मुख से यह बुरी बात निकली, कहता है ईदृशा ने वो बास इसी नित्यम गिरी बने चरा, अरे नित्य वन और पर्वत में रहने वाले ऐसा वस्त्र कभी पहने हो क्या,
ऐसा कहते क्यों ऐसा कहा? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साक्षेपम रुषित प्राह भृतो राज्य सुदूर्ल, भगवान पर आक्षेप करता हुआ बोला, वो सुदुर्मद था, उसका मद उसका अभिमान बहुत बढ़ गया था, रुषित आदमी दुष्ट, तो मद बढ़ गया था, अभिमान में था, क्योंकि राज्य भृत्य वो कंस का पर्सनल भृत्य था, कंस का खास अपना जो कपड़ा होता था उसको रंगना आयरन करना काम करता था, तो बहुत घमंड में था, शायद कंस इसको बहुत हाई स्केल का सैलरी देता होगा, जो भी है इस कारण से उसका मत बहुत बढ़ा था। राजा का पर्सनल सेवक था और इस तरह से उसका मत पहले से ही बढ़ा था, बुरा व्यक्ति, तो भगवान ने याचना किया फिर भी वो नहीं दिया और आक्षेप करते हुए बोला, मान लीजिए कोई बच्चा मांग रहा है वस्त्र मांगे चाहे कुछ भी मांगे, तो नहीं देना है तो कह दे नहीं मैं दे नहीं पाऊंगा, ज्यादातर तो एक करना चाहिए दे देना चाहिए ठीक है चाहे लड़का है, जबकि लाखों लोग उसको देख रहे हैं, इतना तेजस्वी लड़का साक्षात ईश्वर है और सब उसको दे रहे हैं, निछाव कर रहे हैं, और वह अपने मुख से मांग दिया तो मनुष्य को समझे कि हमारा सौभाग्य है कि यह लड़का मांग रहा है, लेकिन उल्टे साक्षेप आक्षेप किया। पहला आक्षेप था गिरी बने चरा, गिरव बने चरा, तुम लोग कहाँ रहते हो, कहाँ घर है और घर कैसा है ये विचार करते हो? आज ही बड़ा बड़ा महल देख रहे हो तो अच्छा वस्त्र पहनने की इच्छा हो गई ना, वन और पहाड़ में रहते हो ना, तो वन में और पहाड़ में रहने वाला क्या ऐसा वस्त्र पहनेगा, इसे कहने का आशय है। वो शहर में आते ही राजा के धन को लूटने की इच्छा हो गई, तुम लोगों को बोलने में शर्म नहीं आ रही, कैसे मान दिया तुम, निश्चित है उसके मरने का समय आ गया। भगवान से इस प्रकार बोलना है, भगवान छोड़ दीजिए कोई भी बच्चा हो 10-11 वर्ष का, और इस तरह से वस्त्र मांग दिया तो गाली देने का पात्र है कभी नहीं, लेकिन यह दुर्मुख इस तरह से बोलने लगे, ईदृशानी और बासान से नित्यम गृह बने चरा परिधत्त परिधत्त, अरे वन में रहने वाले, अरे पर्वत में रहने वाले, गाय चराने वाले, पशु चराने वाले, क्या इस प्रकार के वस्त्र तुम कभी पहने हो, देखे हो? पहनने की बात तो दूर रही, कभी देखा था ऐसा वस्त्र? मांग रहे हो वस्त्र देखो वस्त्र देखो, उद्वृत्ता राजद्रवण अभिषक, अरे उद्वृत्त, उद्वृत्त का अर्थ है जिसका वृत्त जिसका आचरण मर्यादा से ऊपर, तुम बिल्कुल मर्यादा से बाहर बोल रहे हो, तो भगवान को कहता है बोलने से पहले मांगने से पहले अधिकार देखना चाहिए कि मैं इसके योग्य हूं कि नहीं, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ठीक है कहते बोला होगा, अपना पोजीशन देखो किस तरह से वस्त्र पहन कर आए हो और कैसे रहे हो और आज क्या चाहते हो, अपनी योग्यता देखो अपना अधिकार देखो, इस तरह से कभी साहस मत करना मथुरा में, और राज द्रव्याणी अभिक्षत मथुरा में आकर को कोई साधारण वस्त्र नहीं किसी से नहीं, अब राज द्रव्य सरकारी वस्त्र, राजा के वस्त्र को चाहते हो, द्रव्य को चाहते हो, ये पता है ये वस्त्र किसके हैं, दिखने में तो तुमको बहुत सुंदर लग रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन है किसके कभी विचार किया? राज दरबार ये भी सब, अब तुम राजा के कोष को राजा के धन को लूटना चाहते हो, राजा का वस्त्र लेना चाहते हो, वास्तविक बात थी कि भगवान लेना चाहते थे राजा के पद को धन को घर को सब कुछ, तो उसके मुख से सरस्वती जी बोल रही है राजद्रव्याणी अभिषत, राजद्रव्यों को लेना चाहते हो, जाता आंसू जात शीघ्र ही मथुरा से बाहर हो जाओ यदि जीना चाहते हो। जातासु बालसा मयम प्रार्थन यदि जीती निशा, यदि जीने की लालसा है तब तो मथुरा से बाहर चले जाओ, नहीं अगर मरना चाहते हो तो यही कह रहा हूं। और ये संवाद ये खबर तो राजा कंस के पास जाए कि वृंदावन से एक लड़का आया करके और आपका वस्त्र मांग रहा तो सुनते ही कंस क्या करेगा पता लग जाए। तो यदि जीजी निशा यदि जीने की लालसा है तब तो या जाकर और भी आशु शीघ्र जितना जल्दी हो मथुरा से निकल कर भाग जाओ। तो जब तक राजा कंस के कान में खबर नहीं जाती है कि वृंदावनवासी एक लड़का आकर के मांग रहा था वस्त्र को, इसके पहले भाग जाओ, कहीं पहाड़ में छिप जाओ, वन में चले जाओ, नहीं तो कंस को पता लग गया तुम्हारा मरण निश्चित है। अब इससे ज्यादा कर्कश कोई क्या बोल सकता था, रजत इस तरह से बोला। मयूं प्रार्थयन मां एवं प्रार्थयन, एक बार मैं तुमको क्षमा कर देता हूं, उचित तो यही था कि अभी मैं तुमको मार दूं, लेकिन मैं एक दयालु व्यक्ति हूं, तुमको क्षमा करता हूं एक बार, अब कभी ऐसा मत मांगना। मां एवं प्रार्थयन ऐसी प्रार्थना कभी मत करना, मैं हूं कि तुमको नहीं मार रहा। दूसरे जगह अगर मांगोगे तो तुम्हारी बहुत भर्त्सना होगी और तुम्हारी जान मार दी जाएगी, और जीना चाहते हो तो मथुरा से जथा शीघ्र बाहर हो जाओ। अपने अनुगामी गोपों के सामने और श्री बलराम जी के सामने धोबी ने भगवान को इस प्रकार से कहा। जानते हो बदनंती घनंती लुंपंती धृतम राजकुलान लाई, राज परिवार के लोग हैं उन लोगों को बांध लेते हैं, किनको धृत जो लुटेरे होते हैं बदमाश होते हैं तुम्हारे जैसे, उसको राजा लोग बदनंती कारागृह में डाल देते हैं। अभी कंस के पुलिस पहुंचेंगे और तुमको डाल देंगे कारागृह में, इसे जितना जल्दी हो भाग जाओ। बदनंती केवल न तो बदनंती अपितु घनंती, वो बध कर देते हैं, फांसी पर चढ़ा देते हैं राजा लोग, इसलिए बाहर चले जाओ। बदनंती घनंती लूमपंती, तुम्हारे पास जो भी है वो भी लूट लेते हैं राजा, तुम्हारा घर द्वार सब कुछ ले लेंगे और प्राण भी ले लेंगे, वो पता चल गया। ऐसे राजा लोग होते हैं, और उसमें भी हमारे राजा कंस का तो कहना ही नहीं। तो जैसे ही संवाद पाएंगे तभी तुम्हारी शोध करें कहाँ है कहाँ है, और पकड़ करके जान से मार कर। इसलिए जितना शीघ्र हो मथुरा से चलेगा। जितना जल्दी मथुरा से बाहर हो जाओ। इस प्रकार से और भी बात बोला जिसको सुखदेव गोस्वामी यहां कहना नहीं चाहते, इसको कहना नहीं चाहते हैं, बुरी बात बोला, इसलिए कथा के समय सुखदेव गोस्वामी केवल एवं शब्द लगा रहे, एवं बस इस प्रकार। इस प्रकार से और बहुत बात बोला, एवं विकथ मानस्य कुपितो देवती सुता, तो देवती सुत कुपित हो गए। भगवान में वास्तव में क्रोध नहीं आ सकता है, क्रोध का एक नाटक किए, अथवा एक बालक है और अन्य समाज में उनकी बेइज्जती हुई तो क्रोध आ ही जाएगा। तो क्रोध आया और उन्होंने तुरंत ही हाथ चला दिया उसके गर्दन मस्तक ऐसे गर्दन, और ये छुरे जैसा काम किए, छुरे की धार जैसा भगवान का अंग, उनका अंग कुछ भी काम कर सकता है, और उसका मस्तक बहुत सफाई के साथ कट करके जमीन पर गिर गया। अब तो वस्त्र मांगने और लेने की बात ही नहीं रह गई। वह सबसे बड़ा जो रजक था उसका मस्तक फट गया। एवं विकथ मानस से कुपितो देवकी सुतः रजकस कराग्रण सिरह काया दपाते, सिरह काया अपाते, काया से शरीर से सिर को अलग कर दिया, सीधा अलग कर दिया। लगता था कि जैसे छुरी से काटा गया। अथवा कुछ टीकाकारों का कहना है कि भगवान ने इतना जोर से तमाचा मारा सिर टूट गया, गिर गया, जैसा कहते हैं। कराग्र शब्द का प्रयोग है। कराग्र का अर्थ है अंगुली, हाथ, तल, करतल, इसको कराग्र कहते हैं। पूरा कर है इसके अग्र भाग कराग्र सिर्फ काया अपाते अपाते पातित करते गिरा दिए। और जब उसको मारा जोर से भगवान ने तमाचा, चाहे अंगुली से मारा, मस्तक पट कर गिर गया, तब तस्यानुजी न सर्वे वास पोषण विसृत जो है रुद्रभु सर्वतो मार्गम वासान सिंह जगह है चुका। तो उसके जितने भी अनुजीवी थे, उस धोबी के सेवक और जो थे सब कपड़ा लेकर जा रहे थे, और बहुत से गद्धे भी थे, उन पर लादा गया था। तो गद्धे भी भागे, वहीं ऊपर गिर पड़ी पोटली, और जो भी थे सब छोड़ छाट पटक पटक करके जहां तहां भाग गए। वो लोग समझे कि सबका मस्तक काट रहे, सब भाग चले। सर्वतो दिशंकार थे, जिसको जिधर अब मौका मिला उधर भाग गया, क्योंकि सबने सोचा कि एक और भागे में तब तो पकड़ कर मार देगा सबको। तो बहुत भारी आश्चर्य हो गया ना, 10-11 बरस का लड़का और उसके हाथ में इतनी शक्ति कि मार दिया और मस्तक कट गया। फिर तो बहुत आसानी से किसी को भी मारेगा उसके मस्तक कट जाएगा, तो सब भाग चले। कोशन विशेष जो है वस्त्र कोष जो थे, जिनको पुटक कहते हैं संस्कृत, पुटक का अर्थ है कोटली, गठली, सब पटक पटक कर भाग। वस्त्र पटक कर भागे, उसमें कई भाव है। एक टीकाकार कहते हैं, उन्होंने सोचा कि वस्त्र लेकर हम भागेंगे तो भाग नहीं पाएंगे, भारी भारी वस्त्र थे पकड़ ले जाते, इसलिए पटक थी। अथवा उन्होंने सोचा कि इसको तो वस्त्र की जरूरत है, वस्त्र पटक देंगे तो वस्त्र ले लेगा, हमको छोड़ देगा, हमारी याद नहीं करेगा। तो इसीलिए सब लोग वस्त्र पटक करके भाग गए। गद्धे भी भाग गए, और इतना जोर से गद्धे ऊंचके कि पोटली उन पर से भी गिर पड़ी। कपड़ा एक भी लेकर नहीं भागे, सब कपड़ा वही पथ पर ही बिखर गया। भगवान ने रजक का वध क्यों किया, इस पर एक भागवत की टीकाकार कहते हैं, वो कुछ उत्प्रेक्षा करते हैं। रजक हीन कर दिया कंस को, मतलब अराजकता फैला दिया भगवान ने। मानो वो अराजकता फैलाया पहले पहल, रजक हीन कर दिया। भगवान ने इसके द्वारा सूचित किया कि अब मथुरा का राजा मारा जाएगा। कई उपेक्षा किए हैं तो भगवान इस तरह से मारे। और जब वस्त्र वहां गिर गए सब, तब जगृहे अच्युत, अच्युत उन सारे वस्त्रों को इकट्ठा करवाया श्री कृष्ण, एक सारा इकट्ठा करे, इकट्ठा करके भगवान अपने हाथ से खोले पोटली सब, उसको आयरन करके तह का तह सजाया गया था वस्त्र। तो सबसे पहले भगवान लिए वस्त्र। ये प्रश्न होता है कि उन्होंने पहले भगवान को क्यों नहीं दिया, चाहे और गोप थे उनको देना चाहिए, भगवान सबसे पहले क्यों लिए। हरिश्वरी श्री भागवत के बहुत बड़े टीकाकार हमें कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पहले अगर मैं स्वीकार करूंगा तो सारा वस्त्र प्रसाद हो जाएगा, इसलिए पहले मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने अपने योग्य वस्त्र लिया। अपने योग्य मतलब ये पीताम्बर पहनते हैं, तो पीले रंग के खूब उत्तम कोटि के वस्त्र लिए, ले करके पहनने लगे वहीं पर। भगवान संग्रह नहीं करते हैं, वो ये कभी गमछा तक फालतू नहीं लिए, भले बहुत वस्त्र फाइल थे लेकिन भगवान ज्यादा नहीं है। वे पीताम्बर लिए दोनों, एक तो धोती, लेकिन धोती बड़ी हो रही थी, और दुपट्टा भी लिए। यह हो सकता है मथुरा में वे अब कोट भी पहनना चालू किए हैं, राजा लोग जैसे पहनते हैं, लेकिन सब बड़े बड़े थे, परंतु अपने अनुसार लिए, पीताम्बर लिए, और अपने हाथ से बलराम जी को छाट छाट कर नीलाम्बर दिए। दोनों भाई जब ले लिए, वस्त्र पहन लिए, तब वे अन्य गोपों को कहे कि तुम लोग चुन लो अपने अपने लिए वस्त्र ले लो, जिसका जैसा स्वभाव था, जो पसंद थी, जो च्वाइस था, उसके अनुसार वस्त्र सब्जी, बाकी बहुत ज्यादा वस्त्र वहीं पड़े रह गए, भगवान उन सबको नहीं। यह दिखाया गया है कि भगवान लोभी नहीं है, तो जितना आवश्यक है उतना वस्त्र लिया, ऐसा नहीं दूसरा रहता तो अब अपनी अटैची में बक्से में भर भर करके सब ले जाए, है ना, तो भगवान ऐसा करने वाले नहीं। छोड़ दे, दूसरे लोग तो हिम्मत नहीं करते होंगे कि राजा का कपड़ा हम लोग छुए, मथुरा के लोग तो डरते होंगे, वहीं पर उसकी लाश पड़ी थी धोबी की और कपड़े सब बिखरे थे, लोग वीडियो कैमरा लेकर कुछ लोग आए होंगे, लिए होंगे फोटो न्यूज पेपर में देने के लिए किस तरह से धोबी मरा है, किस तरह से वस्त्र बिखेरे गए हैं, कंस को बताने के लिए। हो सकता है या चित्रकार लोग आए हैं, बना लिए होंगे चित्र के ऐसे ऐसे वस्त्र दिख रहे हैं, और वो तो मथुरा के सवेरे की न्यूज में आए, शाम की घटना है तो रात भर में प्रिंट करके देंगे। यह है भगवान की लीला। तो श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया, बलराम जी ने नीलाम्बर, श्री कृष्ण ने पीला वस्त्र पहनते हैं क्योंकि उनकी प्रिया पीली है, पीत वर्ण है, राधा रानी भाई भी गोरे हैं, तो भगवान को बड़ा पसंद पड़ता है पीत वस्त्र पहनना, और राधा रानी नीला साड़ी पहनती अधिकांश, तो उनको बहुत पसंद है अपने प्रियतम के रंग की साड़ी, इसलिए वो पहनती है। और श्री बलराम जी भी नील वस्त्र धारण करती, अपने भाई के प्रेम में कुछ शरीर से और वस्त्र से मेल रहता है, इसलिए वे नील पहनते हैं, उनको नीलाम्बर कहते हैं, कृष्ण को पीताम्बर। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वसित्वात्म प्रिय वस्त्र कृष्ण संकर्षण अस्तकार, कृष्ण और संकर्षण एक साथ वस्त्र पहन रहे थे, भगवान ने कहा कि आप ले लीजिए अपने लायक वस्त्र, तो दे रहे थे अपने हाथ से, तो दोनों एक समय आत्म प्रिय, अपने जो प्रिय वस्त्र हैं, वस्त्रों में कई क्वालिटी होती है, कई रंग होते हैं, तो रंग तो कृष्ण ने पीताम्बर पसंद किया और बलराम जी ने नीलाम्बर, लेकिन उसमें भी कोई रेशमी पहनते थे, कोई कुछ पहनते थे, वस्त्र कई किस्म के पहले भी पहनते थे, तो जो प्रिय था वो ले करके पहने, और शेषाणि आदत्त गोपेभ्यो, और शेष जो वस्त्र थे गोपों को दिए, गोप ले लेकर के सब धारण किए पहने, विसृज भूमिका नीचे, और कुछ वस्त्रों को पृथ्वी पर ही सौंप, भूमि विसृज कानीची, कानीची मतलब तो कुछ वस्त्रों को छोड़ दिए, नहीं यह है देखिए भगवान का उद्धार। किसी भी महान पुरुष को चाहिए कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करे। एक टीकाकार कहते हैं, भगवान यहां शिक्षा दे रहे हैं कि जितनी जरूरत हो ना ही, तो भगवान लिए एक से कपड़ा लिए, तो केवल धोती दुपट्टा नहीं लिए, लिए आगे चल करके पगड़ी बनाने के लिए, कई तरह से बेल भुट्टा सजाने के लिए जाएंगे एक दर्जी के पास, अभी कथा आ रही है, वहां भगवान कहेंगे हमारा हमको सजा दो, हमारे हमारे साइज में कर दो, और मैं इस डिजाइन का पहनूंगा, ये पहनूंगा। बलराम जी भी बता रहे थे, हमारा कुर्ता ऐसा होना चाहिए, हमारी टोपी, हमारा पगड़ी ऐसा होना चाहिए, ऐसा जाकर सब कहे, और बहुत श्रेष्ठ कलाकार
वायक
वायक वायक का दर्ज दस सीमा लो सजाएगा
नहीं देने वाले की ये दशा। इस लीला पर विचार कीजिए, छोटी सी लीला है भगवान की, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान की कोई भी लीला अपने पीछे कुछ उद्देश्य कुछ शिक्षा देती है, सीखना चाहिए भगवान को देना। वास्तव में जो कुछ भी हम लोगों के जीवन में है सब कृष्ण का है। ऐसा नहीं है कि भगवान हम लोगों से मांगते नहीं है, गीता में उन्होंने मांगा है कि हमको दो, जब करो से जदस्नासी जब जिहोश ददासी जब तपस्सी कौन दे तब खुरुष मदद। कोई एक मनुष्य ऐसा नहीं है जो रोज खाता नहीं, खाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ क्या ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पशु की तरह बस भोजन आया विचारते भी नहीं कौन दिया क्या, बस खाना चालू। पशु को कोई घास डाल दीजिए या कुटी डाल दीजिए खली कुछ भी, बस खाना जाने का, ये नहीं कि थोड़ा ध्यान करे हाथ जोड़े भगवान ने दिया है शरीर और विद्या डाल कर दिखाए। ये खाए ठीक है, लेकिन खाने की एक विधि है। पहली विधि यह है कि अपने भोजन को भगवान को अर्पित करना, कम से कम याद भी तो करें कि हे प्रभु तो दिए वस्तु को बिंदु देने व समर्पय, आपकी वस्तु आपको दे रहा हूं। भगवान की ही वस्तु है लेकिन भगवान को समर्पित करके दे करके खाना चाहिए। अच्छा यह अभी बात नहीं है कि भगवान भोजन लेंगे और खा जाएंगे, हम स्टार्विंग करेंगे, हम भूखे तड़पते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कभी किए हैं भगवान एक भी व्यक्ति को देखती है, वो उसको प्रसाद बनाकर लौटा देते, तथापि लोग नहीं खिलाते, भगवान को नहीं देते। एक व्यक्ति को हमसे बहस कर रहा था, कह रहा था कि भक्त लोग इसलिए भगवान को भोजन खिलाते हैं कि वे खाते नहीं, अगर खाने लगे तो ये लोग फिर नहीं खिलाएंगे। हमने कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हारी लड़की खाती है तो लोग नहीं खिलाते हो, भगवान अगर प्रकट खाने लगे तो और ज्यादा खिलाएंगे खिलाने वाले। वैसे वो खाते हैं लेकिन तत्वतः वस्तु भी समाप्त कर दे, रोटी भात खीर चटनी चाहे जो कुछ भी अगर भगवान खत्म कर दे तो उनको और दिया जाएगा। तुम ऐसे कहते हो कि कैसे कहते हो भगवान खाने लगेंगे तो कोई नहीं देगा, तो तुम्हारे परिवार में कितने लोग रोज खाते रहते हैं, बच्चा चार पांच बार खाता है, देते हो कि नहीं? तुम्हारे जैसे भक्तजन नहीं होते हैं, शायद तुम ऐसे हो भगवान खाने लगे तो नहीं दे, तुम नहीं खाते हो तब भी नहीं दे रहे हो। खाने पर क्या दोगे? तो उसकी दृष्टि से मैं कहा कि तुम्हारी दृष्टि से भगवान नहीं खा रहे हैं तो फिर भी तो तुम नहीं दे रहे हो। तो फिर वही आदमी कहता है जब खाते ही नहीं तो कैसे दे? तो मैं कहा तो खाने पर दोगे ना? हाँ खाने पर तो देंगे। फिर वही सिद्धांत अपने सिद्धांत से खंडन कर रहे थे, भगवान स्वीकार करते थे। इस जगत में जीव को यही तो सीखना है कि अपना देह अपना मन अपनी वाणी अपना धन सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना, और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में वैराग्य उसी को कहते हैं। क्या कोई वैराग्य सीखेगा? वैराग्य की कोई जरूरत ही नहीं है संसार में। वास्तव में वैराग्य तब कहते हैं या त्याग तब कहते हैं जब मनुष्य का धन हो वस्तु हो उसको त्याग दे, जब हमारा कुछ है ही नहीं तो इसको त्यागना क्या है? केवल जो अहंता ममता हो गई है कि मेरा भाव वो त्यागना है, वस्तु तो है ही नहीं दिया थी, अभी मर करके चले जाएंगे, त्यागना क्या कठिन है? हमारा है ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति मान रहा है कि घर मेरा है, धन मेरा है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, देह मैं हूं, ये है, सब कुछ भगवान का।
इस संसार में त्याग सीखना है, अहंता और ममता का त्याग। साक्षात भगवान मांगे उस रजक से, लेकिन उसने नहीं दिया, उनके बहुत आक्षेप किया, इस कारण से भगवान ने उसे मार दिया। देखिए भगवान का स्वभाव और भगवान का व्यवहार उनकी लीलाओं में प्रकट होता है। क्या भगवान को आवश्यकता थी कोई, क्या किसी अभाव में थे? वैसे वैसे वस्त्र वो एक सेकेंड में अपने संकल्प से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि परिपूर्ण है न सर्वतः, सब प्रकार की योग शक्ति से, सृष्टि शक्ति से भगवान परिपूर्ण है, सब कुछ वो कर सकते हैं। व्यक्ति हम देखते हैं कि हमको इसने इतना दिया है तो कोटि गुना लौटाना चाहते। भगवान ऐसे नहीं है कि लेह है, उनको कोई अभाव है, मनुष्यों का स्वभाव होता है, लेते हैं ज्यादा देते हैं कम। केवल भगवान का ही नहीं, देवताओं का भी यही स्वभाव है, नहीं मनुष्य का ही नहीं, देवताओं का भी यही स्वभाव है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि देवता बिल व फल के बराबर लेते हैं, बेल फल के बराबर इतना, और देते हैं सरसों के बराबर। सरसों समझते हैं जिसका तेल निकलता छोटा छोटा राई, तो बिल और फल के बराबर जब उनको दिया जाएगा तो सरसों के बराबर वो देखते हैं तुम क्या दे रहे हो बताइए। और मनुष्य तो हिमालय की तरह लेंगे तब सरसों के बराबर देते। लेकिन भगवान सरसों के बराबर लेते हैं और हिमालय से भी अधिक देते हैं, ये भगवान का स्वभाव। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? तीन मुट्ठी चिवड़ा दिया, लेकिन भगवान ने उनको दूसरा द्वारका दे दिया पूरा। भगवान इतने कृतज्ञ होते हैं, आभारी होते हैं भक्त की सेवा से। यद्यपि सुदामा जी की वह अंतिम शक्ति थी कि वे तीन मुठी चिवड़ा दे सकते भगवान को, और कुछ था नहीं उनके पास। वर्णन करते हैं कि भगवान के पास वे पहुंचे थे तो उनके पैर में दीवाई फटी थी, दीवाई कपड़ा कई जगह फट गया था, महीनों से नहीं धोया गया था, और शरीर में नसें उभर आई थी पूरा, भागवत में लिखा गया। और फिर भी भगवान उनको उनके चरण धोने लगे और उस आसन पर बैठाए सुदामा जी को जिस आसन पर वे श्री जी के साथ रुक्मिणी जी के साथ बैठते, और सुदामा जी को बड़ी जा रहे थे कैसे बैठे, लेकिन भगवान ने उनको जबरदस्ती बैठाया और चरण धोए। चरण धोए खूब स्वागत हुआ, खान पान खूब अच्छा से हुआ, लेकिन जाते समय भगवान कुछ दिए नहीं। क्योंकि भगवान है ये सोच रहे थे कि मैं क्या दू इनको, इन्होंने जितना मुझे दिया तो मैं सामने क्या दू, उनको लज्जा आ रही थी वास्तव में, भगवान क्या दू, इसीलिए वो छीप करके दिए। सामने देने में मित्र को संकोच होता है, इसलिए परोक्ष में भगवान देते हैं। तो सुदामा जी रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे, कुछ विनोद में भक्तों ने लिखा है कि सुदामा जी सोचते हैं कि खिलाया पिलाया खूब अच्छा से, लेकिन कुछ दिया है कुछ तो, यहाँ तो लिखते हैं कि बेकार मराया इतना भी रास्ते अंततः ये चोर है, चोरी करके खाने का स्वभाव तब्रज में, तो कहां से उदार हो सके। प्रताप राजा बन गया है फिर भी कुछ नहीं दिया। लेकिन ये तो विनोद की बात, वास्तव में सुदामा जी का ही भाव है। सुदामा जी सोच रहे, भागवत में लिखा गया है, सुदामा सोच रहे कि हमारे मित्र ने हमको नहीं दिया, वो जानता है कि ये ब्राह्मण ऐश्वर्य पा करके हमारे भक्ति से हीन हो जाएगा, भोग में पड़ जाएगा, इसलिए हमारे धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने हमें कुछ नहीं दिया। ये यही सोचते हुए रास्ते में जा रहे थे कि ऐसे मित्र के साथ हमारी मित्रता जन्म जन्म में हो जो हमारा इतना हित का ध्यान रखता है। लेकिन जब पहुंचे अपने घर के पास तो देखे कि उनकी झोपड़ी वहां है ही नहीं, तो पहले तो भ्रम हो गया कि मैं द्वारका लौट आया क्या, फिर से रास्ता भूल करके पुनः द्वारका आ गया। लेकिन ध्यान से देखने लगे तो स्थान वृक्ष शेखा वैसे दिखाई दे रहे, ये स्थान तो वही है। तो कोई उन्होंने सोचा कि कोई बिल्डर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, दूसरा क्या 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 उठाया, हमारी झुपड़पट्टी कहाँ गई, झुग्गी कहाँ चली, वो बार बार सोचने लगे। एक गीत है बहुत प्रसिद्ध सूरदास जी का, उसमें वे कहते हैं कि सुदामा मंदिर देख गरी, कहाँ गए हमारे राम मरैया, कहाँ के धूप उतरी, ये मेरी राम मरैया मेरी झोपड़ी कहाँ गई, कहाँ का राजा आकर के बस गया है, अरे मैं उधर गया वो भी कुछ नहीं दिया, और इधर घर भी गया, हमारी पत्नी को भी कोई ले गया क्या। वो तो विनोद में मैं कह रहा हूँ कि उधर भी गया कुछ नहीं दिया, तो वास्तव में बहुत सुदामा जी प्रसन्न थे। तब तक उनकी पत्नी रुक्मिणी जी के समान सुंदरी बन करके और अन्य सुंदरी स्त्रियों के साथ आरती सजा करके आने लगी था, तो ये तो बिल्कुल नहीं पहचान पाया। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप चकित मत होइए, आपके मित्र ने यह भवन बनाकर दिया है, नगर बनाकर दिया है, विश्वकर्मा जी ने बनाया तुरंत। तो वो कहे कि मैं पत्नी हूं और ऐसे 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 मेरी सखियां हैं सहेलियां हैं, तो सुदामा जी वहीं पर खड़े खड़े रोने लगे, कहते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, भागवत में बोले हैं मैं धन नहीं चाहता हूं, मैं वैभव नहीं चाहता हूं, अपने मित्र के साथ मेरी मित्रता जन्म जन्म में हो यही चाहता हूं। इस तरह सुदामा जी भागवत में बोले हैं, और वो कहते हैं कि जैसे बादल रात्रि में वर्षा करते हैं किसानों के सो जाने पर, उसी तरह से मेरा मित्र परोक्ष में मुझे दिया, प्राय वर्षा रात में होती है, लोग देखते हैं गांव में किसान सोए रहते हैं और सवेरे जगते हैं तो देखते हैं कि उनके खेत में पानी भरा हुआ है, तो बादल रात में देते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण परोक्ष में मुझे दिए, सामने संकोच कर रहे थे, बार बार कहते हैं कि हमें उनकी मित्रता चाहिए, सत्य चाहिए जन्म जन्म में। इस प्रकार भगवान है जीवों कि द्वारा अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास आए, चाहे देने के लिए चाहे मांगने के लिए। यदि कोई भगवान से मांगने जाता है तो उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे गीता में अपने मुख से कहते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतमो जुना आर्तो जिज्ञासु रथाति ज्ञानी च भर्तर सभा, और बाद में कहते हैं उदारा है सर्वे वैसे ज्ञानी तत्पय में मतम, ये सभी उदार है, उदार है, उदार उसको कहते हैं जो देवता, ये सभी उदार है, उदारा सर्व एव एते। ये प्रश्न किया जा सकता है कि आर्थ और अर्थार्थी क्या उदार है, वो तो आपसे मांगता है, और भगवान कहते हैं सभी उदार है, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी चारों महा उदार। तो भगवान इसलिए उदार कह रहे हैं, कोई अर्थार्थी धन का इच्छुक भगवान के पास आता है और भगवान जब उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो इसके द्वारा भगवान का यश फैलता है, तो भगवान अपने भक्तों को इतना धन देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज तो भगवान को भी यश दिया इस याचक ने, इसलिए कहते हैं कि महा उदार उदार है। या गजेंद्र पर संकट पड़ा, वे आर्त थे, द्रौपदी आर्त थे, भगवान ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाया, गजेंद्र जी की विपत्ति दूर किया, इसके द्वारा भगवान का यश फैलता है संसार में, भगवान आर्त का दुख हरण करते हैं, इसलिए अपने दुखी भक्तों को अर्थार्थी भक्तों को उदार कह रहे हैं, उदारा सर्वे। तो भगवान के पास तो आकर के मांगे तब भी उदार है और दे तब तो उदार है, भगवान के पास किसी भी तरह से आना चाहिए, मांगने के लिए चाहे देने के लिए। तो एक बार प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया कि प्रभुपाद जी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सब तरह से परिपूर्ण है, तो फिर भगवान इतने बड़े होकर के मांगते क्यों हैं? गीता में कहते हैं जो खाते हो दो, जो करते हो मेरे लिए करो, जो दुख सहते हो मेरे लिए सहो, ये दो वो दो, हमको एक पत्ता भी दोगे तो मैं खा लेता हूँ। तो इस प्रकार अपनी भूख भगवान प्रकट कर रहे हैं, अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। ऐसा कोई है राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर जो कहे तो हमको कोई पत्ता भी देगा तो हम ले लेंगे, प्रेम से देते ना, पत्ता नहीं चाहिए, तो दूसरा पत्ता चाहिए, डॉलर चाहिए लोगों को। भगवान ने तुलसी के पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते क्यों ऐसा कह रहे हैं? इस पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जानते हैं कि कुछ लोग इतने अभिमान में रहते हैं कि वे मांगने नहीं आएंगे, वे सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम धनी हैं, हम क्यों मांगे भगवान, इसीलिए भगवान उनसे मांगते हैं कि ठीक है तो तुम देने के लिए आओ भाई। अभिमान में वो मांगेगा नहीं तो अभिमान में दे सकता है ना, तो सोचेगा अच्छा ईश्वर बोल रहा है तो भगवान मांग रहा है तो ठीक है दे दो उसको, हमारा जस हो, हमारा नाम हो। कुछ लोग हैं ऐसे संसार में जो सबसे मांगते नहीं चलते, वो भगवान से भी नहीं मांगते, अभिमान में रहते हैं पर देते हैं। आप उनको कहिए कि कल कल मंदिर में आया करो, भगवान का दर्शन करो, उनसे कुछ प्रार्थना करो, मंदिर में हमें आने का फुर्सत नहीं है, चेक देता हूं लेता ठीक है। तो किसी भी तरह से कृष्ण से संपर्क जोड़ो, तुमको मंदिर में आने की फुर्सत नहीं है भगवान का दर्शन करने की, लेकिन दान दे दो, लाख लाख डॉलर लोग दे, कहते हैं कि आप हमारी ओर से जय बोल दीजिएगा हमें आने की फुर्सत नहीं है। हम लोग भी कहते ठीक हो जाए, संपर्क जुड़ा इस तरह से भगवान से देने का। और कभी कभी आदमी पैसा देता है जहां तो वहां आकर के देखता है क्या हुआ है, तो उस नाते से भगवान का दर्शन हो जाता है। किसी भी तरह से भगवान चाहते हैं संपर्क। तो यहाँ आज की लीला में जो मथुरा के राजपथ पर घटना हो गई है, तो इस पर विचारक या भक्तजन बहुत तरह से और कर सकते हैं, भाई भगवान की इस लीला के पीछे आशय क्या है? आशय यही है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसी में कल्याण है। भगवान के विरुद्ध बोलना, भगवान से प्रेम न करना, उल्टा व्यवहार करना आदमी के तत्कालिक जीवन का भी नाशक होता है, परलोक में भी असंगति है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करके जी रहे हैं, उनका जीवन अन्य लोगों से बिल्कुल दूसरा है। जैसे मान लीजिए वस्त्र पहने, तो एक आदमी विवाह के अवसर पर वस्त्र पहनता है या ऐसे पहनता है, और वही वस्त्र यदि किसी मुर्दे पर लपेट दिया जाए तो कफन माना जाता है। वस्त्र तो वो भी है, लेकिन उस पर आदमी देखना तक नहीं चाहता है। और कोई कह दे कि ये पहले कफन था, इसका आप गमछा बना दीजिए, व्यक्ति तो मर जाएगा कि अरे बाप रे बाप, ये मैं नहीं धारण कर सकता। तो भगवान के भक्ति के बिना जो जीवन है वो मरा हुआ जीवन है, जीने खाने से क्या होगा। सांस भले चल रही है, लेकिन भागवत में कहा गया है कि वो मरा हुआ व्यक्ति सांस ले रहा है। यदि मरा हुआ व्यक्ति सांस लेने लगे तो और भयानक बात है। कोई मुर्दा ले जा रहा है, मुर्दा बीच में सांस लेने लगे तो लोग पटक कर भाग जाएंगे कि भूत हो गया, ये क्या हो गया। तो वास्तव में भगवान की भक्ति के बिना सब भूत जी रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, विमान में घूम रहे हैं, सब भूत सिगरेट पी रहे हैं, कई तरह से भयावह जगत है वास्तव में। नहीं तो कहीं कहीं लोग जीवित हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान को अपने जीवन में समझना, उनको यथाशक्ति वस्तु अर्पित करना, प्रेम करना, यही जीवन है। अन्यथा भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता उस व्यक्ति को। भगवान की बनाई हुई दुनिया में आदमी रह रहा है तो भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए, भगवान को समझ करके जीना चाहिए, प्रेम करके। इस घटना से शिक्षा मिली, और नहीं तो केवल विफलता ही विफलता। तो भगवान रास्ते में चल रहे, हमको क्या जरूरत है वस्त्र मांगने की और सब करने की। लेकिन भगवान ने सोचा कि कुछ सिद्धांत प्रकाशित करके चलना चाहिए, तो वस्त्रों को लेकर भगवान आगे बढ़े। अब आगे ततस्तु बायक प्रीतस्तयोर्देशम कल्पय। तो भगवान चलते चलते वस्त्र लेकर के एक दर्जी के पास गए, वायक के पास। जहां भगवान खड़े होते थे तो सैकड़ों अपने सखा थे, बाल बाल थे, और लोग भी अपार तेज को, सुंदरता को देखने के लिए जुट गए। उधर दूर परिस्त्रियां महलों से देख रही थी, छत से सब लोग देखते रहते कहां गए हैं, कुछ इस दुकान में गए हैं, उधर जा रहे हैं। और कोई कोई आते, कोई फल वाले आते थे, फल अपने आप बिना मांगे दे रहे थे, भगवान लेकर अपने सखाओं को रखने दे देते थे। कल का इतना ही हो गया, थोड़ा फल देते थे, कोई कुछ दे रहा है, कोई अलंकार देख रहा था, बड़े बड़े सोनी सेठ लोग आकर के उनको सोना का गहना पहना रहे, भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। यदि सब तरह से परिपूर्ण है लेकिन भगवान स्वीकार कर रहे हैं, भेंट की सामग्री दे रहे हैं। वस्त्र बहुत जरूरी है देश काल के अनुसार पहनना। तो भगवान दर्जी के पास गए, तो देखा देख करके खड़ा हो गया, प्रणाम किया और बहुत प्रसन्न हो गया। प्रीत भगवान ने कहा कि हमें इस प्रकार का, इस कटिंग का ड्रेस चाहिए, ऐसा चाहिए, चाहिए हमको ऐसा सजा दो, बना दो। तो फर्स्ट क्लास का दर्जी था, बहुत जल्दी ही उसने बनाया। उसके और भी लोग थे, अकेले नहीं था वो, मास्टर था और दर्जियों का। सबको बताया, सभी ग्वाल बालों का और कृष्ण बलराम का, सबका डिजाइन बना बना करके काट करके फिट कर दिया। यहाँ तक वस्त्र का ही मुकुट बना दिया, बेल बूटा सजा दिया, जैसे लखनऊ में लोग पहनते हैं ज्यादा कपड़ा वैसे तैयारी किया हुआ, सब फिट कर दिया। विचित्र वेश बनाया, विचित्र वर्ण चयन, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े से बनाया। जैसे मान लीजिए भगवान का कुर्ता बनाया, कोट बनाया, तो भिन्न भिन्न कपड़े का उसमें जोड़ जोड़ कर कई रंग का, चैले और मुकुट बनाया, वस्त्र से कंकर बनाया, कई तरह से सजा दिया, पगड़ी बांधा, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे कृष्ण बलराम। एक तो ऐसे ही अपार तेज है। एक भक्त हमसे पूछा, एक बार कथा कह रहा था खटिया में, तो पूछे भगवान जो वस्त्र पहन कर गए थे वो वस्त्र क्या किए ब्रज से। हमने कहा किसी सखा को दे दिया होंगे झोला में रखने के लिए। मथुरा और दूसरा वस्त्र पहन लिए। इस तरह से दोनों को सजाया दर्जी ने। नाना लक्षण भेषा ध्यान कृष्ण राम धीरे जो स्वयं कृत बाल गजो पर बनी व सीते करो। तो जैसे एक काला हाथी और एक उजला हाथी का बच्चा बाल गजो शोभित होने लगे, उनको सजाया जाए गहनों से, वस्त्र से, और सुंदर लगे, उस तरह से कृष्ण बलराम शोभित होने लगे। आप लोगों ने देखा होगा हाथी का बच्चा बहुत सुंदर लगता है। हाथी तो बड़े हो जाते हैं तो ज्यादातर खाने को नहीं मिलता है तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन हाथी के बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं। तो कोई गौर वर्ण का हाथी हो और कोई काला हो, उनको विविध विविध वस्त्रों से सजाया है तो जितना भी अच्छा लगते हैं, उस तरह से कृष्ण बलराम धीरे शोभित होने लगे। अब तक इतना वस्त्र व्रत भी नहीं पहने थे, भिन्न प्रकार बिताई, इतना कीमती नहीं पहने थे। गांव के लड़के गरीब गाय गौएं चराते हैं, वस्त्र पहनने की फुर्सत है, सवेरे को भोजन करने की फुर्सत नहीं होती, जो अपना कलेव अपना जलपान काम करके ले जाते हैं, ब्रेकफास्ट बर्न करते। जो भी वो भगवान की यह लीला है, इस समृद्ध नगर में प्रवेश करते ही भगवान का वस्त्र और देश सब बदल गया, बहुत सुंदर लग रहा है। अब देखिए यहाँ ठीक रजक से तुलना कीजिए,
तस्य प्रसन्नो भगवान,
उस पर भगवान प्रसन्न। यद्यपि भगवान उसको सिलाई दे रहे थे, कुछ भक्तों का कहना है कि भगवान जब मथुरा गए थे तो ब्रज से कुछ सोने के सिक्का लेकर गए थे, मार्केटिंग करना है, बाजार करना है, दे करके करना, ऐसे क्यों करेंगे? तो दर्जी को देने लगे कि आप अपना चार्ज ले लीजिए सिलाई ये सब, ये हाथ जोड़ लिया, चरण में जोड़ लिया, कहने लगा मैं कुछ भी नहीं होगा, मैं मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार ये है कि आप और भी समय में जो मथुरा में रहिएगा तो आकर हमारे पास कपड़ा सिलाइए, यही हमारा दान। तो भगवान उस पर बहुत प्रसन्न हुए, तस्य प्रसन्नो भगवान प्रागत सारूप्यम आत्मना, अगले जन्म के लिए भगवान ने उसको सारूप्य दे दिया कि तुम्हें चतुर्भुज रूप की प्राप्ति होगी और तुम हमारे धाम में रहे, पार्षद बना लिया, एक तो वो दान हुआ। लेकिन कुछ नास्तिक लोग या अविश्वासी लोग कहेंगे कि अरे आगे का क्या पता है, दिया नहीं दिया आगे का, वर्तमान में क्या दिया तो वर्तमान का ज्यादा महत्व देते हैं। इस पर सुदेव गोस्वामी कहते हैं, श्रियं च परमां लोके बलैश्वर च स्मृतिन्द्रियं, लोके इस जीवन में भगवान ने परमं श्रियं दिया, परमं श्रियं का अर्थ परम धाम, श्रेष्ठ कोटि का धाम, मात्रा में और गुण में ऐसा धन दिया जितना धन और किसी के पास नहीं। दर्जी को भगवान ने धन दिया, भगवान को देने वाले को वास्तव में धन की प्राप्ति देखी गई है संसार में। एक व्यक्ति हमसे सुना रहे थे अभिषेक सूत्र में, मैंने कोई व्यक्ति उनसे कह दिया, निवास रथ यात्रा में हम लोग थे और आए हुए थे, तो किसी ने कहा कि भगवान आपकी इच्छा के अनुसार आपको धन दिए हैं, तो वो कहते हैं मेरे सामने ही थे, वो कहते हैं इच्छा के अनुसार हमने जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना भगवान दिए, वो कहते हैं इच्छा के अनुसार ही नहीं दिए, मैं उतना इच्छा भी नहीं कर सकता था जितना दिए। इस तरह से भगवान देते हैं। तो पूछ मैं कहा कि कैसे धन हुआ, तो कहा भगवान को देने से हुआ, भगवान को मैंने अर्पित किया वे दिए। एक बार की घटना एक भक्त सुनाए थे केनिया में, वो लंदन में रहते थे, तो अपने वाइट फोर्ट मंदिर में भक्ति विदान मैदान में वे आए थे, जन्माष्टमी का दिन था और कुछ लोग बोल रहे थे कि भगवान के लिए हम ये दान दे रहे हैं, ये दान दे रहे हैं, तब तक उनकी बारी आई तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सुना रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, लेकिन हमारे मन में भी उत्साह आया तो मैं 500 पाउंड का संकल्प किया भगवान को देने। बाद में जाकर के मैं मुश्किल से उस दान को पूरा किया, तो बताया कि उसके बाद हमारी घर में धन की ऐसी वृद्धि हुई, तो मैं कहा कि कितना उससे बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हजारों हजारों गुना मेरा व्यापार बढ़ गया उस दिन से। ये बिल्कुल सत्य घटना है, उनका नाम भी मैं बोल सकता हूं राजन जानी नारायण, भगवान को देने का एक प्रभाव वो सुना रहे थे। उस दिन वो कारण थे, उसके पहले हम बड़े चिंता में रहते थे, लेकिन भगवान ने देखा कि अपनी शक्ति भर दिया तो कई गुना दिया भगवान ने। इस प्रकार लोग अनुभव सुनाते हैं कि भगवान की सेवा किया, उस दर्जी ने सिया भगवान के कपड़े को, तो उससे अपार धन मिला,
प्रियम परमम श्री बल और शारीरिक बल ऐश्वर्य ऐश्वर्य का पद ऊंचा पद और स्मृति शक्ति तथा इंद्रियों की पटुता मतलब दीर्घायु उसकी इंद्रियां बहुत दिन तक जब तक शरीर रहेगा तब तक आंख खराब नहीं होगी काम काम करेगा हाथ काम करेगा इसकी इंद्रियों को सब दिया यह आशीर्वाद प्राप्त हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं किसी किसी के घर में कोई बहुत बड़ा रोगी व्यक्ति होता है कहते महाराज आशीर्वाद कीजिए ये ठीक हो जाए हम यही कहते हैं कि भगवान को प्रणाम किया कीजिए रोज मंदिर में या अपने घर में भी भगवान को बार बार प्रणाम कीजिए यह असाध्य रोग भी चला जाएगा निश्चय हम यही बताते हैं और कभी कभी बताते हैं कि नारायण कवच का पाठ भगवान की शरण भगवान का नाम तो देखिए भगवान की सेवा का प्रभाव कि अपार धन बल ऐश्वर्य और स्मृति शक्ति तथा इंद्रियों की पटुता सब प्राप्त है तो क्या चाहिए लोग में इससे ज्यादा तो भगवान ने उस धरती को इस प्रकार का वर दिया प्रदान दिया इसके बाद चले आगे तपह सुदाम भवनम मालाकार से जगमग हो इसके बाद भगवान मालाकार सुदाम के घर गए सुदामा नाम का रहता था मालाकार माली उसका नाम सुदाम था दाम का अर्थ माला और सु का अर्थ अच्छा इतना सुंदर माला बनाता था कि उसका नाम ही हो गया सुदाम ऐसे जन्म से वंश परंपरा से ही माली माला बनाते रहते हैं पुष्प उगाते हैं बगीचे में और माला बनाते हैं उठते हैं उनकी बनाई हुई मालाएं भगवान को या शुभाकित होती रहती है तो बहुत सुंदर माला मतलब बनाता तो भगवान देखे होंगे तो एडवर्टाइज कुछ पढ़े होंगे जहां कहां या घर के बाहर माला टंगी होगी फूल माला दिखती ही रहती है भगवान देख वस्त्र हो ही गए थे और माला चाहिए शहर के लायक नगर के लायक माला पहनने के लिए चल या वृंदावन में रहते हैं तो भगवान को माला पहनने का बहुत शौक है इसलिए उनको बनमाली कहते हैं फूल की माला पहनकर भगवान रत्न की माला पहनकर सुखी नहीं होते वो तो ये कहीं धारण किए है कौस्तुभ मणि उससे सारा मनोरथ पूरा हो जाता है वनमाला पसंद करते हैं फूल की माला तो मालाकार सुदाम के घर में दोनों भाई गए दोनों भाई घर में गए और जो गोप थे सब बाहर खड़े हो गए तब तक सुदाम ने देखा दोनों भाइयों को अपने दुकान में आते हुए दुकान और घर दोनों एक कहीं था ऐसा नहीं था कि रेजिडेंस उसका दूसरी जगह था शॉप है दूसरी जगह घर उसके पीछे ही था सामने दुकान दोनों भाइयों को देखते ही वो खड़ा हो गया और दौड़ करके घर से आया तब दृष्टवा से समुत्थाया ननान सिरसा धुई दोनों भाइयों को देख करके वह मालाकार खड़ा हो गया आया भगवानी किया आ करके भूमि ननान पृथ्वी पर अपना मस्तक रख करके प्रणाम किया साष्टांग प्रणाम किया ननान लौट गया चरणों में कृष्ण बलराम प्रणाम किया इसको भक्ति कहते हैं उसी मथुरा में रजत भी रहता है जो भगवान के हाथ से मारा है और वस्त्र तक नहीं दिया सुंदर वचन नहीं दिए वस्त्र देने की बात वचने का जरूर होता है यदि किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो कम से कम सुंदर वचन बोलना चाहिए आप आए हमारे घर पर बहुत अच्छा हुआ आपका स्वागत वचन से ये क्या दरिद्र कुछ ऐसे वचन दरिद्र भी लोग होते हैं कोई उनके घर जाए तो और उनके गाड़ी सुना देंगे हमें पसंद नहीं है तुम आए इस तरह से बोलते हैं जैसे कोई मान लीजिए भीख मांगने वाला भिक्षुक गया किसी दरवाजे पर तो कभी कभी कह देते हैं जाओ आगे बढ़ो अरे आगे बढ़े तो आगे तो जाएगा ही तुम्हारे घर दखल थोड़े करने आया लेकिन ऊपर से कुछ न कुछ वचन बाढ़ चला जाओ आगे जाओ ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं किस देश में भगवान आकर के मांग रहे है ना, और वो भी नहीं पहचाना। कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए भीख मांगने वालों का। कुछ लोगों के मन में ऐसी भावना है कि अरे ये सब दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार हम कहां तक दुख दूर कर पाएंगे। अगर तुम्हारे घर में भी कोई ऐसे बीमार हो, लूला लग रहा हो, तो कब ये भोग रहा है, इसको हमको क्या देना है, ऐसा कह सकता है आपने। हमें हमेशा ब्राइट साइड लेना चाहिए, हमें सहारा देना ही है दीनहीन को, गरीब को, यही मनुष्यता है। तो किसी को हम कुछ दे नहीं पाए, नहीं स्वागत कर पाए, तो वचन से स्वागत करें। और वचन से भी नहीं स्वागत किए तो कम से कम मुख तो रहता, चुपचाप रहता। ये विष तो नहीं उगलना चाहिए। कोई आए हमारे घर पर, हम ले जाकर तेजाब एसिड डाल दिए उस पर, ये वचन तो उससे भी ज्यादा खराब है। तो सुदामा माली आया और प्रणाम किया। तयोरासनमानीय पाद्यं चाधारणादिभिः पूजां साङ्गयोश्चक्रे श्रक्ताङ्गुलानि लेपने। और इसके बाद सारे गोप सखाओं को बुलाया, भगवान को ला करके अपने घर के विशाल आंगन में बैठाया, आसन लाया। ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कोई स्पेशल आसन था, अपने घर में जो आसन था वो लाया और भगवान उसको बैठ गए। आसन था मतलब पलंग हो गया, चाहे कुर्सी टेबुल जो भी, लाया उसको बिछाया, कपड़ा शुद्ध साफ, और घर में चारों तरफ फूल ही फूल था, सुगंध ही सुगंध थे। तो भगवान आकर बैठे और भगवान के जितने भी सखा थे उनके लिए भी फर्श पर दरी आदि बिछाया गया होगा, जो भी वहां बैठे। और कृष्ण बलराम एक आसन पर बैठे, सबकी पूजा किया। वहां पूजा का ये अर्थ है, सबसे पहले जल लाया, पाद्य करते हैं उसको, पाद्य का होता है चरण धोने के लिए जल। अपने हाथ से कृष्ण और बलराम के चरण कमल को धोया। किसी के घर पर कोई जाए, विशेष करके ब्राह्मण, तो उसका धर्म हो, साधु और वैष्णव, तो उसका धर्म होता है कि वह चरण धोए, चरण पखारे। लेकिन यह तब बात होती थी कि भाई कोई रास्ता चलकर फटा मना आया है तो उसका चरण धोना चाहिए, यह सिद्धांत था। लेकिन उस सिद्धांत की रक्षा अभी भी भारतीय लोग करते हैं, कोई कार से भी गया है तो फिर भी चरण धोते हैं। देखे है ना, परंपरा चली आ रही है, उसमें थका मांदा नहीं है, लेकिन फिर भी चरण धोने की परंपरा है। चरण धोना तो कभी कभी इधर के लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, ये क्या जरूरत। एक बार एक व्यक्ति का चरण धो दिया ठंडा पानी से एक घर में, एक साधु का चरण धो दिया। साधु कहता है हमारी ये बहुत बड़ी तपस्या है कि हमारा चरण ठंडे जल से धो दिया गया, ऐसा सुन रहे। मेरा जीवन बड़ा स्पीयर है, ठंडा पानी से मेरा चरण धो दिया, तो गर्म पानी से धोना चाहिए, जैसा मौसम हो उसके अनुसार। ये नहीं कि इंडिया जाए और मई जून में गर्म पानी से चरण धो, जाड़ा में गर्म पानी चाहिए। जो भी है, कृष्ण बलराम का चरण कमल धोया, तयोरासन मानिया, पाद्यम चाधारणा भी पूजा किया, कई तरह से सभी को, कृष्ण बलराम को स्पेशल उनका स्वागत किया। ऐसे माला पहनाया, माला की बात बाद में आएगी, तांबूल अनुलेपन, सभी गोप वालों को तांबूल लाया, वंश परंपरा से तांबूल सेवा उसका काम था। तांबूल मैंने पान, पान लाया, सब लोग पान खाने लगे, अनुलेपन से चंदन से तिलक किया सबको,
चंदन तांबूल और श्रव माला पहनाया था। जो भी माला था सबसे अच्छा था सबको दिया। काफी मालाएं थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी स्वागत में। काफी मालाएं कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कहीं हम लोग जाते हैं किसी गृहस्थ के यहाँ या फिर समृद्ध गृहस्थ के यहाँ तो मान लीजिए वे 8 माला मंगाए हैं और वैष्णव चले गए 12 4 ऐसे ही आ जाते हैं। 8 को माला मिली और 4 ऐसे ही आ जाते। लेकिन वहां पर भगवान का कोई ऐसा पार्षद नहीं था जिसको माला न मिली। वो कदाचित मान लीजिए कहीं कोई जा रहा है और मालाएं नहीं है सबके लिए तो फूल भी अर्पण कर देना चाहिए जो बाकी रहता है वो भी स्वागत हो जाता है। तो सुदाम ने स्वागत किया भगवान का सबको दिया चरण धोया चरण जल घर में छिड़का अपने संबंधियों को दिया और कहता है ये तो काया से पूजा है भगवान। तो भगवान राजीव साक्षात बैठे हैं घर में और उसके बच्चे उस माली के बच्चे और उसकी स्त्री सब आए सब भगवान के चरण में लौट रहे हैं गुप्त सखाओं के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी गृहस्थी वास्तव में धन्य है जिस घर में भगवान साक्षात आ जाते हैं। तो भगवान के भक्त साधु जिस घर में जाते हैं वो गृह धन्य हो जाता है। तो भगवान जिस घर में गए हैं वो भी साधुओं के साथ अपने गोप सखाओं के साथ गए तो क्यों नहीं वो घर धन्य हो जाएगा। तो सुदामा कहता है प्राण सार्थकम जन्म पारितम चकुलम प्रभो हे प्रभो हमारा जन्म सार्थक हो गया। जन्म जिस फल के लिए देते हैं ब्रह्मा जी वो फल मिल गया। आप हमारे घर आए आप हमको प्राप्त हुए आपकी सेवा का मुझे अवसर मिला तो मेरा यह शरीर सफल हो गया मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। जन्म की सफलता भगवान की भक्ति में है। धन प्राप्ति पद प्राप्ति मान प्राप्ति या बहुत दिन जी जाना ये सब जन्म लेने का फल नहीं है। जन्म लेने का फल है भगवान से प्रेम बढ़ाना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 अब न सार्थकम जन्म प्राह न सार्थकम जन्म न माने हमारा हम सबका जन्म सार्थक हो गया। और पावितम च कुलम प्रभो हे प्रभो हमारा कुल पवित्र हो गया। पवित्र हो गए सारे पाप का वंश परंपरा से कोई भी गलती हुई होगी हमारे पूर्वजों द्वारा तो आज सब पाप भूल गए सब पवित्र हो गए। आपके गृह पितृदेव से मयम पुष्टा ह्य आगमने नवा हमारे पितर ऋषि और देवता सब तृप्त हो गए। किसी भी मनुष्य पर देवताओं का ऋषियों का और पितरों का बहुत बड़ा ऋण रहता है। वह ऋण कैसे उतरता है जब उनकी सेवा की जाए और सबसे अधिक विधि है ऋण उतारने की वो है भगवान की सेवा करना भगवान की भक्ति करना। पितरों का क्या ऋण है हम पर पितरों का ऋण है वंश परंपरा से उन्होंने संतान दिया है। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हमारे पिताजी के पिताजी उनके पिताजी तो इस तरह से हमको जो देह मिलता है वह पितरों की कृपा होती है। वे आशा में रहते हैं कि हमारा पुत्र हमारा परिवार का व्यक्ति शुभ कर्म करेगा सत्य का पालन करेगा धर्म करेगा भगवान की भक्ति करेगा तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। जैसे भगीरथ जी ने अपने पितरों का उद्धार किया गंगा जी को नहाकर इसी प्रकार प्रत्येक पितर अपेक्षा रखते हैं अपने पुत्र से। लेकिन अगर पुत्र इधर बीड़ी पीने लगे सिगरेट पीने लगे तो उनकी अवगति होती या और भी आदत हो जाए क्लब में जाने की ये करने की संडे को क्लब में न आकर के अरे मंदिर में न आकर कहीं क्लब में जाए इधर उधर तो पितर तो और भी घोर नरक में ट्रांसफर किए जाते हैं। कम दुखद नरक में होंगे उनको बेसी ज्यादा दुख का नरक में क्या डाला जाए बर्गर खाने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, जुआरी हो जाए तो गिराते। जिस वंश में भगवान के भक्त उत्पन्न होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शुभ आचरण करते हैं, तो जो पीतर नरक में गिरे होते हैं वे भी उद्धार उद्धृत हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, वो स्वर्ग में भेजे जाते हैं। और इसी तरह से ऋषियों का ऋण है हम पर, हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं वेद शास्त्र, इसको हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने परंपरा से दिया है। यदि मान लीजिए हम जन्म लिए और हमारे सामने भागवत नहीं रहता, गीता नहीं रहती, महाभारत उपनिषद, हम अपने से क्या भगवान को समझेंगे? तो भगवान को समझने में और जीवन में अन्य पुरुषार्थों को प्राप्त करने में भी ऋषियों का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे से। तो जब हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, व्याख्या करते हैं, तब हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और इसके बाद देवताओं का ऋण है, देवता हमें प्रकाश देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो जब हम देवताओं को ये चीज लौटाते हैं और खास करके भगवान की पूजा करते हैं वस्तुओं से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और देवता सब तृप्त हो जाते हैं। तो जिसके घर में साक्षात भगवान आए हैं, तो क्यों नहीं उसके द्वारा सारे देवता पितर ऋषि सब तृप्त हो गए। आगमनेन वा, आप दोनों हमारे घर में आए, आपके आगमन मात्र से हमारे पितर तृप्त हो गए, कर गए। आपने सुना होगा पितरों के विषय में जब बात की जाती है तो तृप्ति की बात की जाती है। अश्विन के महीने में पितृपक्ष आता है तो उसमें हमने देखा है गंगा जी में खड़े होकर के लोग कहते तृप्तान तृप्तान जल देते तृप्तान, तो पितर अतृप्त रहते हैं, दुख में रहते हैं। जो उनके वंश में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता है या भगवान की भक्ति करता है तो उसको तृप्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उनका इलेशन होता है। तो मेरे पिता तृप्त हो गए, देवता संतुष्ट हो गए, ऋषि संतुष्ट हो गए, भवंतो कुल विश्वस्य जगतः कारणम। तो भगवान ने कहा क्यों ऐसा क्यों कर, हम तो गोप हैं, वृंदावन में रहते हैं, घूमते घामते आ गए, तो हमारी सेवा से, हमारे आगमन से आपके पितर अधिकृत हो गए, कैसे होगा? तो वो कहता है नहीं, आप गोप नहीं है, आप जादव नहीं। भवंतों के विश्व से जगत कारण करो, आप ही दोनों विश्व के और जगत के कारण। विश्व का अर्थ है संपूर्ण आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिसको विश्व कहते हैं, जैसे नदी, पहाड़, इस विश्व है। और जगत का अर्थ होता है जीव। इस विश्व में हम देखते हैं बहुत से स्थान हैं, पर्वत, नदी, समुद्र और बहुत से जीव हैं। तो जीवों के और विश्व की समस्त वस्तुओं के कारण आप दोनों हैं, मतलब आप ईश्वर हैं, आपने विश्व को उत्पन्न किया है। वो पहचान गया प्रभु को, भगवान को पहचान गया। भवंतों के विश्व से जगत कारण करम, इस विश्व के और समस्त जीवों के कारण आप है। यह एक बहुत ही सुंदर विषय है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा विचार करना चाहिए कि वास्तव में जीवों को कौन पैदा किया, या इस विश्व को कौन बनाया, पृथ्वी कौन बनाया, जल, वायु, अग्नि, इनका निर्माता कौन? हम लोग में से तो कोई नहीं है ना, क्योंकि हम लोग तो खाली हाथ आते हैं, एक ग्राम मिट्टी लेकर नहीं आए हम। और आते हैं तो कहते हैं लैंड मेरा है, प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी डीलर है ना, जबकि कुछ नहीं लेकर आए थे, न ही कंप्यूटर लेकर आए थे, न लंगोटा, न लोटा, कुछ नहीं लेकर आए, कुछ लेकर आए थे क्या? आप तो कह सकते नहीं, हमारे बाप की संपत्ति है, हमारे पिताजी ने घर बना कर दिया था, यह दिया था, तो पिताजी से पूछिए वे लेकर आए थे? तो नहीं, हमारे पिताजी ने दिया था। इस तरह से पितृ परंपरा को पीछे धकेला जाए, पूछिए सबसे कि आप कुछ लेकर आए थे इस दुनिया में? नहीं, हम लेकर नहीं आए। सभी तो यही कहेंगे, और अंत में आप ब्रह्मा जी से पूछिए तो भी कहेंगे हम लेकर नहीं आए, ये तो भगवान ने बनाया था पंचभूत, तो उसी से मैं प्राणियों का शरीर रचा, तो ये सब भगवान ने दिया, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसा नहीं कोई कल्पना है, कोई भाव है कि हाँ भाई भगवान सृष्टि किए हैं हम नहीं किए। और कोई अगर ज्यादा तार्किक हो तो कम से कम उसको तो इतना समझना ही पड़ेगा कि वो नहीं किया, ये भले कह सकता है कि हमको पता नहीं है किसने बनाया है, लेकिन तुमको पता है ना कि तुम नहीं बनाए हो, ये भी पता नहीं है। इतना पता होना चाहिए तुम नहीं बनाए हो, तुम कुछ लेकर नहीं आए हो, कौन बनाया है इस विषय में भले तुम्हारा ज्ञान हो सकता है, तो उसका उत्तर शास्त्र दे। तो हम लोग वास्तव में कुछ लेकर तो नहीं आए हैं, लेकिन यह विश्व इतना विशाल, इसमें सोना है, अभ्रक है, कोयला है, और इतना गैस, इतना तेल, इतनी अमेरिका में गाड़ियां चल रही हैं कि सारे तेल भूमि से निकाले जा रहे हैं। भूमि में कौन सरकार डाली थी तेल, यहाँ जो तेल की टंकी होती है वहां तो भूमि में कुछ डालते हैं कुछ लीटर तेल, लेकिन भगवान का तेल लाकर यहां डालते हैं उसको बेचते हैं। इतना विशाल स्टॉक कि यदि सारे तेल को एक जगह जोड़ा जाए, सारे संसार के कल कारखाना में, गाड़ियों में, बस में, ट्रक में और ट्रेन में या कार में कितना खर्च होता है तेल एक दिन में, बहुत विशाल मात्रा हो जाएगी, है ना? ये कितना मिलियन गैलन हो जाएगा जो रोज का जोड़ा जाए तेल, और निकल ही रहा, कंटिन्यूअस निकल रहा, वाह भगवान की सृष्टि, निकालने वाले निकाल निकाल कर बेच रहे हैं, सप्लाई करने वाले इधर उधर बेच रहे हैं, लेकिन किसका है? अगर वो आने वाला गर्दन पकड़ कर कहे क्यों किसका तेल है, तब क्या कहे, उसका कुछ बिल नहीं होता है, केवल सप्लाई करने वाले का बिल हो जाता है। कोई किसी के गोदाम से स्टोर से सामान चुरा चुरा करके बेच रहा है और मालिक आ जाए पकड़ ले तब क्या होगा, ये दशा मनुष्य घर को कहते हैं मनुष्य समाज। बहुत ज्ञान होता जा रहा है, मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच रहा है, मंगल पर जाने की चेष्टा कर रहा है, ये कर रहा है, और उसको ये पता नहीं कि कौन बनाया है। आप इस संसार में कहीं देखिए, किसी नगर में जाइए, किसी घर में आप कहीं पहुंचिए, क्या पहुंचने मात्र से उसकी प्रशंसा होगी? आप किसी घर में जाइए कहीं मैं यहां पहुंच गया हूं, और आपको पता ही नहीं वो घर किसका है, तुरंत पकड़ कर जेल में चले जाए, है ना? ये तो पता होना चाहिए कि घर किसका है, वस्तु किसकी है, और कोई सोना देखे, कुछ वस्तु देखे कहे हम पहुंच गए, हम इकट्ठा कर रहे हैं, कौन बनाया है, किसका है, प्रोप्राइटर कौन है, ये तो जानना चाहिए ना। वो है कृष्ण बलराम, सुदाम पहचान, सुदाम पहचान लिया थी। आप दोनों जीवों के अग्रज हैं, मतलब जीवों को जन्म दिए हैं, और जो जीव इस संसार में रह रहे हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं भोग से भूमि या आकाश आदि सब आपसे जन्मा है, भूमि से करोड़ों प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न हो रही है, वृक्षों की गिनती नहीं है और फलों की गिनती नहीं है, ये फल सामने हैं आपके ना, ये किसी आदमी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये वृक्ष से उत्पन्न होकर आ रहे हैं, ये वृक्ष धरती पर खड़े हैं, भूमि पर खड़े हैं, तो भूमि से तो लाखों प्रकार के फल सब्जी अनाज सब कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, और भूमि के भीतर से सोना चांदी लोहा स्टील ये सब पैदा हो रहे हैं। कितनी विलक्षण सृष्टि है भगवान की, भगवान जो जीवों को बनाए तो उसके पहले उनको पोषने का उपाय रचा है, पंच महाभूत पहले उत्पन्न हुए, भूमि जल वायु अग्नि आकाश से पहले हुए, क्योंकि इतने जीव उत्पन्न करेंगे तो खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, इसलिए उनके समान पहले जुटा करके तब जन्म दिया गया,
ऐसा नहीं कि घर से जन्म लेने के बाद सोचेंगे कि अब कैसे बच्चे का पालन होगा, क्या होगा। भगवान ऐसे अज्ञ नहीं है। अनंत अनंत कोटि जीवों को 84 लाख जोनियों में रचने से पहले सारा सामान जुटा दिए। तो जो सामान जुटाया धरती बनाए रहने की जगह, इसको विश्व कहते हैं, और जीवों के समुदाय को जगत कहते हैं। जैसे जगन्नाथ कहते हैं, जगन्नाथ का कहता जगता जीवा नाम नाथ है जगन्नाथ, जीवों के नाथ है, रक्षा का खोज रखे जगन्नाथ। तो विश्व शब्द दिया गया इस श्लोक में और जगत शब्द दिया गया। तो जगत का अर्थ जीव और विश्व का अर्थ सब वस्तु है। इन दोनों के आप परम कारण है। तो भगवान का मैं तो एक जादव हूं, मैं तो यहां जन्म यहां, तो कहता अवतीर्ण इतिहास से नहीं, क्षमाए च भवाय च, आप इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं, अपने धाम से आए हैं, आप दोनों अवतीर्ण हुए हैं अपने अंशों के साथ, अन्य गुरुओं या जादुओं के साथ आप अवतार लिए हैं। अस्य क्षमाए च भवाय च, इस जगत की रक्षा के लिए, और भव का अर्थ है विकास के लिए, समृद्धि के लिए, जीव सुरक्षित रहे और विकास करें, मतलब आपकी भक्ति करें, सुख से रहें, इसके लिए क्षेम का अर्थ का रक्षा करना है। जैसे योग क्षेम बहा में हम सब क्षेम का अर्थ अशुभों के आक्रमण से बचाना। बहुत से लोग हैं संसार में जो भगवान के द्वारा बनाए हुए नियमों की अवहेलना करते हैं, तो उन दुष्टों का दमन करते हैं, रक्षा करते हैं, और मनुष्य समाज में धर्म की स्थापना करते हैं, सबके कर्तव्य बताते हैं, से मनुष्य आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, या और भी कई तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से वह समृद्धि को प्राप्त हो, इसको भाव कहते हैं, भवाय क्षमाय च भवाय च। क्षमाय का अर्थ इस जगत में आदमी अच्छा से रहे और सुख से भगवान का भजन कर, इसको भाव कहते हैं। तो आप दोनों अवतार लिए हैं जगवंश में, इस विश्व में समस्त जीवों के हित के लिए, रक्षा के लिए और उनके अभ्युदय के लिए। तो भगवान ने कहा कि अभी अभी मेरे द्वारा जो दो कर्म हुए हैं आपको पता है, तो उसने कहा हाँ पता है, रजत का वध और वायक पर अनुग्रह। रजत का वध भगवान ने किया और दर्जी पर कृपा किया। तो भगवान कहते हैं कि तो इसे तो स्पष्ट लगता है कि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ करके एक से वस्त्र मांगा और दूसरे ने हमारे वस्त्र की सिलाई कर दिया तो मैं खुश हो गया, तो मैं तो विषम हूं, ईश्वर तो सम है। एक जगह मैं याचना किया और नहीं दिया तो उसको मार दिया, और एक जगह सिलाई कर दिया तो बहुत खुश हो गया, उसको कितना कितना दे दिया, ये तो ईश्वर का लक्षण नहीं है। भगवान मानो प्रश्न करते तो कहते नहीं नहीं, आप ईश्वर नहीं वाम विस्मा दृष्टि सुहृद चरदात्मा समय सर्वभूते से भजंतम भजते। भगवान की इन दो लीलाओं पर कमेंट दे रहा है श्रीदा, नहीं वाम विस्मा दृष्टि, आप दोनों में विस्मा दृष्टि नहीं है, यह अनुग्रह का पात्र है, अनुग्रह का पात्र है, आपने ऐसी दृष्टि नहीं, आपने दृष्टि है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय आप सम है सबके प्रति, समोहम सर्वभूते से मने विश्वस्त न। भगवान शुरू से कहते हैं कि मैं सबके लिए सम हूं, न मेरे लिए कोई स्पेशल द्वेष का पात्र है, न कोई प्रिय पात्र है, लेकिन विषमता उधर से होती है, कोई मुझे जलता है, मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी प्रेम करता हूं, और द्रोह करता है, द्रोह करता द्रोह व्यक्ति नहीं करता हूं, लेकिन उधर से दृष्टि विषम होती है। तो क्यों भगवान विषम नहीं है, सम है? क्योंकि जगदात्मा समस्त जीवों के हृदय में अंतर्जामी रूप से आप बसते हैं, सभी के हृदय में आप हैं, सबको ज्ञान स्मृति आदि देते रहते हैं, और दूसरी बात है कि आप सुहृद हैं, सबके हृदय में रहते हैं और सबके हितैषी। जैसे माता पिता अपने पुत्रों के लिए सहज हितैषिता करते हैं, हित चाहते हैं, वैसे ही हे प्रभु आप सुहृदम सर्वभूताना समस्त जीवों के सुहृद हैं, आप जिस प्रकार से उस दर्जी के प्रति सौहार्द किए, वास्तव में आपका सौहार्द रजत के प्रति भी है। रजत का वध भगवान ने किया तो वह भगवान के धाम में गया है, ये भगवान का अनुग्रह। इसलिए भगवान किसी को तारे या मारे दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गली में ऐसे पड़ा हो, हिप्पी बन गया हो, और कोई कृपालु व्यक्ति आ गए और उसको दो चार तमाचा मार करके कहे चलो हमारा फ्लैट पड़ा हुआ है वहां रहो, यहां तो रहो, हमारा बंगला है, बढ़िया घर है, चलो रहो, मारे तो देखने में गली में लगेगा कि उसको दो चार तमाचा मार रहा है, और मार करके ले जाए अपना घर भेजे फ्री रहने के लिए, तो क्या वह निग्रह कर रहा है? नहीं, अनुग्रह कर रहा है। तो भगवान जिसको मारते हैं तो उसको अपने धाम भेज देते हैं, इस दुख में संसार से मुक्त कर देते हैं। यह भगवान का अनुग्रह, निग्रह नहीं। ऐसा लगेगा कृष्ण की इच्छा पूरी नहीं हुई कि धोबी का मस्तक काट दिए, मार दिए, ये तो कैसे आदमी केवल गाली के देने से इतना कड़ा दंड दिए। हम कुछ तो ये कह सकते हैं कि भाई वो राजा का वस्त्र था और राजा का सेवक था तो कैसे मांगने से वस्त्र दे दे। लोग तर्क करते थे, भक्त लोग विनोद में तर्क करते थे, तो हमने कहा ठीक है वो नहीं देता, भाई राजा का सेवक था तो दुर्वचन क्यों बोला, ये तो राजा का नहीं था ना दुर्वचन, उसका था ना। नहीं हाँ वंश परम पहले जन्म का ही भक्त था। हाँ तो इस जन्म में वो कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण की ब्रज लीला और साक्षात तेज देखा, सुंदरता देखा, बहुत काल से भगवान के बारे में सुनता आ रहा है, इस कारण से उसकी भक्ति थी, हम पहचान लिया। अब इसी जन्म में देखिए हम लोग बहुत मनुष्य हैं, लेकिन कोई कोई भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को पहचान लेते, कहते कृष्ण हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं, कृष्ण को भोग लगा कर खाते हैं, वस्त्र अर्पित करके पहनते हैं, तो कई कई क्रियाएं भगवान को समर्पित करके करते हैं, और कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं। तो बहुत हमको क्या गौर से मतलब है, अगर है भी तो हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं है ही नहीं, और कुछ कहते हैं है लेकिन निराकार है, तो निराकार से को क्या वे आसन पर बैठाएंगे और क्या माला पहनाएंगे। वो तो भगवान की पूजा न करनी पड़े इसलिए वो मत निकाले, तो निराकार है, अगर साकार मान लेंगे तो आरती करनी पड़ेगी, भोग लगाना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, निराकार है तो वह सब जगह भजन हो रहा है। वो आलस्यों का सिद्धांत है, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, भगवान का भजन सब निराकार चलता है और भोजन निराकार नहीं चलता है। एक बार एक आदमी कहा भगवान का भजन मन से करना चाहिए, मन से ही होता है, मैं कहा और भोजन, भोजन भी किसी किसी दिन मन से किया करो, कुकिंग नहीं करना पड़ेगा, या मन से ही पकाओ, सब करो, रोटी बनाओ, ये बनाओ, सब मन से बनाओ और मन से ही खा लो, तो मन से खा नहीं पाएंगे पर भोजन मन से हो जाएगा, तो करना नहीं है, असली बात ये है, करना नहीं है तो सब मन में हो रहा है। मन ही मन एक दिन चले जाओ अपने जॉब पर, ऑफिस में घर पर रहो और मन ही मन सोचो कि मैं गया हूं ऑफिस में, मैं कंप्यूटर चला रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो डिसमिस कर देंगे सकते हैं। मन से पहले तो शरीर से करना पड़ता है, तो भगवान की भक्ति मन से, वचन से और तन से करनी होती है। तो कुछ आलसी लोग हो गए हैं, वो कहते हैं अगर उनको नाम जपने के लिए कही भगवान नाम बोलने का, तो कहते नहीं मन से करना। और ऐसा भी कहते हैं कि आप गाड़ी से बोल रहे हैं और आपका मन इधर उधर जा रहा है, तब हम तो उत्तर देते हैं कि मन कहीं जाए, इसे तो कोई तात्पर्य नहीं है। मान लीजिए कोई पहरेदार है, किसी के यहाँ पहरा दे रहा है, सिक्योरिटी है, गार्ड है, पहरा दे रहा है और पहरेदार द्वार पर खड़ा है, अगर उसका मन अपने घर चला गया है, अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, लेकिन फिर भी खड़ा है, तो उसको तो वेतन मिलेगा ही। तो मालिक ये नहीं पूछता है तुम्हारा मन कहाँ गया, कहीं गया था, शरीर खड़ा था ना है कि नहीं, ये शरीर खड़ा है। और नहीं वो किसी दिन कह दे कि मालिक से ग्राहक लेकर कह दे कि मैं मन से खड़ा था आज वहां और तन से घर का काम कर रहा है, तब तो उसका अच्छा स्वागत होगा। तन से भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना, जप करना, ये सब कई प्रकार के भजन है। लेकिन निराकार जो लोग मानते हैं तो उनको प्रणाम ही नहीं करना पड़ता है, किधर प्रणाम करें, ऊपर है कि नीचे है कि बगल में, प्रणाम कहाँ करें। एक व्यक्ति को कहा कि हम लोग दंडवत करते हैं, निराकार वाली था, कहा कि हम दंडवत करते हैं। दंडवत का अर्थ किया, कहा कि आप लोग झुकते हैं गंगा की तरह, हम लोग गंगा की तरह खड़े रहते हैं, ये हमारा प्रणाम। दंड खड़ा रहता है गंगा है, उन्होंने कहा तो तो दंड वक्त हुआ ना, प्रणाम तो हुआ ना, प्रणाम का अर्थ झुकना, प्रणाम प्रणाम। गंगे हम खड़ा ऐसे दंडवत करते हैं, तर्क किया, लेकिन उसे तर्क कट गया, दंडवत आप कर रहे हो ना, प्रणाम कर नहीं रहे। संस्कृत में प्रयोग किया है दंडवत प्रणाम या प्रणत, जैसे दंडा खड़ा रहता है लेकिन उसको गिराया जाए तो उतनी ही लंबाई को उधर करेगा पृथ्वी पर, तो सीधा जितना हमारा शरीर लंबा है उतना हम हो जाए, उसको दंडवत कहते हैं, बिल्कुल फर्श पर दंडवत प्रणाम ऐसे कहते हैं। तो एक भक्त मजाक लेकिन पूछा कि दंडा को यदि छोड़ दिया जाए तो खाए से गिरेगा, तो ऐसे गिरना चाहिए क्या? हमने कहा कि दंडा तो निर्जीव होता है ना, आप सजीव हैं, तो वो ऐसे ही झुकिए जिससे चोट ना लगे। सभी बातें कही रही जाती है ना, अपने आप समझ लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मरद बुझे अरध बुझे मरद, सौंस बुझे दर्द, आधा कहते ही जो समझ जाए वो है मरद। मर्द जो है वो आधा कहते ही पूरा समझ जाता है, आधी बात कहे वो पूरा समझ जाएगा, लेकिन पूरा कहने पर जो समझो तो बैल है, बैल भी पूरा कहने पर समझ जाएगा, है ना। अब आज मान लीजिए कोई डायरेक्शन किसी से पूछे कि भाई हम अमुक जगह पर कैसे जाएंगे, डाउन टाउन कैसे जाएंगे, हमको डायरेक्शन दीजिए, तो वो व्यक्ति इतना ही देगा डायरेक्शन कि उस लाइट पर आप बाएं मुड़ जाइएगा, उसके बाद वो लाइट आएगा, ये नहीं कहेगा कि लाइव देखना तो रोक देना, हरा देखना तो चला देना, ये तो नहीं कहेगा। तो मरद है ज्ञान में समझ रहा है, केवल हल्का सा इंडिकेशन चाहिए, और ये नहीं कहेगा कि स्टॉक देखना तो रुक जाना, यील्ड यील्ड कहते हैं उसको, देखना तो जरा सावधानी से देखते हुए जाना, पीला देखना तो या तो जोर से चलाना नहीं तो रुक देना शुरू। तो इसका आशय ये है कि यदि हम लाल होने से पहले निकल रहे तो ठीक है, लाल बत्ती हमसे पहले निकल जाए, नहीं तो ये संभावना हो कि लाल होते होते हम इधर आ जाए, पहले ही रखना चालू करना चाहिए। रिड्यूस स्पीड, कई तरह की बातें होती हैं। मेरे कहने का आशय है कि भक्ति मार्ग में ईश्वर को भी समझने में कोई इंडिकेशन कर दिया गया है, सारी बातें बुद्धिमान को नहीं बतानी पड़ती है। जो निराकारवादी है वास्तव में वो आलस्यवादी है, उनको भजन करना नहीं है, इसीलिए ईश्वर को निराकार कहकर के आराम से रहते हैं, काम चलाते हैं, उनका कोई प्रेम नहीं है। तो ईश्वर कभी निराकार नहीं है। वास्तव में भगवान मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। तो इस प्रकार से भगवान सबके प्रति सम है, किसी के प्रति विषम नहीं है, वही इस जगत के कारण है सबके। हाँ, भजंतम भजते रहते, प्रेम करने वाले से भगवान प्रेम करते हैं, ये उनका स्वभाव। भजंतम भजमान, भज भजन का सेवन, प्रेम करना। अभी भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनसे प्रेम करता है तो प्रेम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिता के कई पुत्र हैं, लेकिन जो पुत्र सब तरह से पिता की सेवा करता है, मानता है, तो पिता सम होते हुए अवश्य उस पुत्र के प्रेम का बदला चुकाता है ना। देखा जाए यदि सभी पुत्रों पर उसकी सम दृष्टि है, सबके भोजन, सबके वस्त्र, सबके लिए घर का प्रबंध करता है, लेकिन जो पुत्र पिता का भक्त होता है तो उस पर पिता की विशेष दृष्टि होती ही है। तो वह पिता की ओर से विषमता नहीं है, उधर से विषमता है। एक व्यक्ति पिता को अच्छा समझ रहा है, सेवा कर रहा है, दूसरा पिता को निग्लेक्ट कर रहा है, उधर से विषमता है। जैसे जजाति महाराज थे, उनके चार पुत्रों ने उनको जवानी नहीं दिया, छोटे बेटा ने जवानी दिया, तो फिर जब भूमंडल का त्याग करना हुआ वन में जाते समय, तो राजा जजाति ने अपने छोटे पुत्र को ही राजा बनाया, जदु को नहीं बनाया। जदु को उन्होंने कह दिया, तुम लोग राजपूत होते हुए क्षत्रिय नहीं कहलाओ, जादव तुम लोग क्षत्रिय हो, राजा के कुल में हो, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए तुम लोग क्षत्रिय नहीं कहलाओ। साफ दे दिया। तो पुत्र तो सभी कहीं थे, लेकिन पिता का अनुग्रह का पात्र हुए पूर्व महाराज, जिस वंश में अर्जुन युधिष्ठिर आदि का जन्म हुआ था। इस तरह से भगवान है, भगवान सारे सृष्टि बनाए हैं, सब पर उनकी बराबर दया है, बराबर दृष्टि है, स्नेह है, लेकिन जो उनको मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान का आशीर्वाद उनको ऊपर बरसता है। जैसे कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष की शरण लेता है तो कल्प वृक्ष उसकी इच्छा पूरी करता है, परंतु कल्प वृक्ष सम होता है। यही भगवान का स्वभाव। इसके बाद कहता है, आज्ञा कयत भृत्यम किम हम कर्माणिनाम, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान से भगवान से कहता है, आप दोनों हमें आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। सब तरह से जीवन की सार्थकता वास्तव में इसी में है कि मनुष्य को ये समझना चाहिए भगवान हमसे क्या कराना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का मैं पालन करूं। तो सुदाम पूछ रहा है कि हम क्या आपकी सेवा करें, हमारे किस व्यवहार से आप प्रसन्न होंगे, हमें आज्ञा दीजिए। तुमसे अति अनुग्रह ये सब भगवत जब नियुक्त जगह, यदि आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य में लगा लें तो यही आपका जीव पर सबसे बड़ा अनुग्रह होगा, अति अनुग्रह। यही पुत्र का धर्म है, शिष्य का धर्म है कि वह अपने पिता से ऐसा कहे कि मैं आपका क्या प्रिय करूं। ये नहीं कि पिताजी चाहते हैं कि बेटा को कुछ कहूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि कुछ कहे। जवाब दे देगा, पालन नहीं करेगा। तैयार रहना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा, कृष्य वचन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो आज्ञा बहुत कठोर थी भगवान की, लड़ो मारो काटो, और अर्जुन को करना पड़ा, वो किए प्रसन्नता से बात। इस तरह से श्रीराम कहता है, जब कोई व्यक्ति आपकी आज्ञा का पालन करता है और आप आज्ञा देते हैं कि यह करो, तो यही जीव पर आपका अनुग्रह है कि आप आज्ञा दें, आपकी इच्छा का पालन हो। तो इस प्रकार से जब कहा उसने, तब तो भगवान संकेत किए, कहे नहीं खुल करके, उन्होंने संकेत किया, यह कहा होगा कि आप मालाकार हैं, हमको कुछ स्पेशल माला चाहिए। तब सुदाम के परिवार के लोग उसकी स्त्री खूब सुंदर माला बनाना चालू किया कृष्ण भगवान के, और गोपों के लिए पहले तो जैसा बना था वैसे ही पहना दिए थे, लेकिन भगवान से जब उन्होंने कहा कि हम आपकी क्या सेवा करें तो भगवान ने कहा हम माला चाहते हैं। तो विरचिता माला, खूब सुंदर ढंग से बनाई हुई माला उसने दिया भगवान को और बलराम जी को। सस्ते सुगंध कुसुमल, प्रशस्त मतलब श्रेष्ठ कोटि के पुष्पों से बनाई गई, सुगंधित पुष्पों से। यहाँ जैसे निर्गंध पुष्प से नहीं, खूब सुगंध जिसने थे ऐसे पुष्पों से माला बनाया। भारत में निर्गंध पुष्प प्राय नहीं होते, सब सुगंधित होते, और इधर तो शायद ही किसी में सुगंध है ना, इधर भी रहती है सुगंध कम रहती है। सुगंध ही पुष्प कुसुम विरचिता माला, विरचिता का अर्थ है विशेष रचिता, बीच बीच में भिन्न भिन्न ढंग के फूल लगाते थे एक निश्चित दूरी पर, कई वर्ग के पुष्प से बनी हुई माला भगवान को पहनाए और बलराम जी को पहनाए। देखिए भगवान से पूछा गया कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो भगवान उस व्यक्ति की उस स्थिति के अनुसार सेवा मांगे। भगवान ने कहा पुष्प चाहिए, ऐसा नहीं कह दिए कि हमको करोड़ों रुपए का रत्न दीजिए माला दीजिए, वैसा माला। भगवान किसी की सेवा की शक्ति को देख करके ही कहते हैं कि ये सेवा करो। इतना विवेक मनुष्य में रहना चाहिए, कोई हमारी सेवा करने के लिए कहे तो समझ लेना चाहिए कि कितनी इसकी शक्ति है, कौन सेवा प्रसन्नता से कर सकता है। और नहीं मान लीजिए आपको कोई कहे कि हम आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप कहिए, और उस सेवा करना चाहता है $100 से, और उसे इतना मान लीजिए बाद में $1000 की, अब नाम भी मान लो कि इससे भेंट हो मुझे। ऐसा है संसार में, ऐसा होता है। तो देखना चाहिए क्या एक स्थिति है और कितना देकर के प्रसन्न रहेंगे, इनका सुख होगा। भगवान पुष्प की माला मांगे, रत्न माला नहीं मांगे। पुष्प माला में क्या लगता है, वृंदावन में आए जैसे पुष्प माला खूब महंगी माला होगी तो 15 रुपये की, 20 रुपये की, खूब महंगी खूब अच्छी, और नहीं तो ऐसे 5 रुपया 7 रुपया में माला अच्छी मिल जाती है। भगवान प्रसन्न थे, उनको मांगने के लिए कहा गया तो पता हमको माला चाहिए। भगवान मिथ्या चीज क्यों, व्यर्थ की बात क्यों मांगे, और कपड़े की जरूरत है कपड़ा मांगे, और सिलाई की जरूरत है सिलाई करवा ली, और माला पहन ली, व्यर्थ। हम कोई कहेगी और सुदामा से कहे कि हमको एक रूम है हम दे दो, हम मथुरा में आए हैं हमारा घर नहीं है यहाँ रहेंगे, अटैच बाथरूम कोई हो रूम तो दे दो। भगवान ऐसा नहीं कहे, जो तत्काल आवश्यक वस्तु है उसको भगवान का, तो उस माला को बना करके दिया। और सब लोगों को माला बनाई गई स्पेशल बलराम जी को और हम सबको। ताभिश्वलंकृत प्रीत कृष्ण राम सहानुद प्रणताय प्रपन्नाय दगतुर्वर बलराम। दोनों भाइयों का उसने अलंकार किया चंदन आदि से, माला से, और कृष्ण बलराम के एक एक माला नहीं कई कई प्रकार की माला पहनाई गई। ये भगवान माला मांग दिए तो उसका माला बनाना सार्थक हो गया, जीवन धन्य हो गया। भगवान की बहुत सी सेवाएं हैं, लेकिन उसमें माला एक बहुत सेवा है, माला पहनते ही। मनुष्य माला पहनना नहीं जानते हैं, हम लोग तो देखते हैं कितने लोगों को माला पहनाई है किसी लीडर को नेता को, तो माला पहनाते ही निकाल कर हाथ में रख लेता है, देखते हैं माला पहनते नहीं है लोग। यहां तक भगवान की प्रसादी माला भी पहनाई तो निकाल कर तुरंत हाथ में रख लेता है, ये कौन सा ढंग है माला हाथ में रखने के लिए पहनने के लिए। भगवान की प्रसादी माला को बड़े गर्व से पहनना चाहिए, मैं भगवान का दास हूं, यह भगवान का प्रसाद है, यही मेरे जीवन की शोभा है। सीखना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। भगवान की प्रसादी माला पहनने में कोई हर्ज नहीं, हाँ डायरेक्ट खरीद करके नहीं पहनना चाहिए, वो गलती है। शास्त्र में लिखा गया है कि व्यक्ति को अपने से माला नहीं पहनना चाहिए कभी, बाजार से खरीदे और लगा अपने माला स्वयं भगवान हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान की प्रसादी माला तो आवाज से पहनना चाहिए। हम लोग तो कभी कभी गांठ में भी माला लगा करके सोते हैं, भगवान का प्रसाद है, भगवान के देह पर रहा है तो रात भरे बहे से भले ठंडा लगे लगे कुछ भी ऐसे सौभाग्य है। हाँ सब तरह से शुक्र है, भगवान का प्रसाद है। इंद्र ने भगवान की माला को स्वीकार नहीं किया तो दुर्वासा ने साथ दे दिया कि तुम निर्धन हो जाओ, ये कथा है भागवत। तो भगवान माला लिए और बड़े प्रसन्न हुए दोनों भाई और उन्होंने वर दिया। तो श्रीराम से जब श्रीराम ने कहा कि हम आपको क्या सेवा करें बोलिए, तो भगवान ने कहा माला चाहिए और उन्हें माला दिया, श्रृंगार किया, खिलाया पिलाया सभी को, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और दोनों भाई कहते हैं आप वर मान लिए, क्या चाहिए आप? तो इसने वर क्या मांगा, इति तस्मय शोक वर्द्रे अचलाम भक्ति तस्मी मेरा खिलाता है। उसने वर क्या मांगा, भगवान में अचला भक्ति का वर, जो कभी चलाए मानना है, अचल अखंड भक्ति मांगा। आप दोनों के चरण कमल में हमारा जन्म जन्म में प्रेम बढ़ता जाए, बस यही वर चाहिए और कुछ नहीं है। लेकिन जाने से पहले भगवान उसको वर दिया, ऐसे तीन वर मांगा भगवान से, भगवान में अचल भक्ति और भगवान के भक्तों के साथ मित्रता और समस्त जीवों पर परम दया, तीन वर मांगा। शोक बद्रे अचलान भक्ति तस्मीन एवं अचलात्मनी तद भक्ते सुच सौहार्दम भूतेश दया परा। ये है जीव का धाम, भगवान में भक्ति हो, भगवान के भक्तों से प्रेम हो और सभी जीवों पर परम दया, यही है जीव की स्थिति। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था, कृष्ण भक्ति जीवे दया वैष्णव सेवान, यह सारी धर्म नहीं सुना सनातन। कृष्ण में भक्ति हो, प्रेम हो और उनके भक्तों से संबंध हो सख्य और सभी जीवों पर दया हो, इसको छोड़कर तौर पर दूसरा धर्म नहीं, यही धर्म। तो इन तीन वरों को उसने मांगा, भगवान ने कहा ठीक है। इति तस्मय वरम दत्त्वा, उसको वर दिया भगवान ने, लेकिन इसके बाद और अपनी ओर से कहा वर दिया, श्रियम चान्वय वर्धिनी, श्री दिया धन दिया जो अन्वय वर्धिनी, वंश वंश में धन बढ़ता जाए ऐसा धन दिया। उसको जो धन दिया भगवान ने, उसके बेटा को उससे ज्यादा हो रहा है, उसके नाती को उससे ज्यादा हो रहा, बढ़ता बढ़ने वाला धन भगवान ने दिया। एक व्यक्ति जब भगवान को इस तरह से समर्पण करता है, भक्ति करता है, तो उसके वंश में जन्म लेने वाला कभी गरीब नहीं रह सकता। और प्रत्येक गृहस्थ को अपने से भी अधिक चिंता होती है अपने पुत्र के लिए, है ना? ये सब देखा गया है। कभी कभी आदमी सोचता है कि अभी तो ठीक चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, ये बच्चे हैं उनका क्या होगा कैसे। यदि इस चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान उन बच्चों को ही दुख नहीं होने देंगे, उन्हें जितनी जरूरत है देंगे। तो अन्वय वर्धिनी श्री अंतर्गत वंश परंपरा से बढ़ने वाला धन भगवान ने दिया, कोई चिंता की बात नहीं। तो जितना अपेक्षित धन है, जितना चाहिए धन, कभी भी ऋण कर्जा नहीं होगा और बच्चे कभी सफर नहीं करेंगे धन के बिना, या उनके जो बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे, वंश परंपरा से धन बढ़ता जाए, ऐसा भगवान ने कहा। वंश परंपरा से बढ़ने वाला तुमको धन मिले और बल और पूर्ण स्वस्थ शरीर रहेगा और आयु बहुत लंबी आयु भी है। बलम आयु जस्सा, बल दिया भगवान ने पूर्ण स्वास्थ्य और बहुत दिन तक जीने का बल दिया, तथा जस्सा, जस्सा का अर्थ है कीर्ति। तुम बड़ा बड़ा काम करोगे, तुम्हारा समाज में जस रहेगा, नाम रहेगा। कांति, कांति का अर्थ सुंदरता। केवल ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा जीवन जिए और बेड पर गिर करके जिए, ऐसा नहीं। कांति मतलब शरीर बिल्कुल युवक रहेगा जब तक जियोगे तब तक। और इतना दर्द दे करके दोनों भाई निकल गए घर से, जब निकलो तो वो आया द्वार तक छोड़ने के लिए और कहा कि मथुरा में यदि रहिएगा तो हमारे घर आते रहिएगा कभी कभी। इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, और फिर वे निकल करके चल रहे मथुरा के राजपथ पर चल रहे। ये भगवान की तीन लीलाएं आज मैं कहा। श्रीदान का उद्धार, श्रीदान पर कृपा, दर्जी पर कृपा और रजत वध, तीनों लीलाओं में भगवान के स्वभाव का प्रकाशन हो रहा है। वास्तव में यह गृहस्थ आश्रम एक नरक स्थान है। आप लोग रंज मत होइएगा, कठोर बोल रहा है, लेकिन यह गृहस्थ आश्रम इस विषय में धन्य है। यदि घर में साधु का आगमन हो तब गृहस्थी बंधन कारक नहीं है। ये कहीं धन है गृहस्थों का, वो है अपने घर में साधु का आगमन, उसके सेवा का एक अवसर। यहाँ पर एक भक्त ने टीका में लिखा है, उसे पढ़ रहा है। सुदाम कहता है भगवान से, गार्हस्थ्यं मम धन्य मद्य फलिता सद्ब्राह्मण उक्ता शिषा। हे कृष्ण, आपके हमारे घर में आगमन से हमारा गार्हस्थ धन्य हो गया, ब्राह्मणों ने जो हमको आशीर्वाद दिया था वो आज फलीभूत हो गया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सफल हुआ, पितरों सेवन मत अदम्भ विहितम, और यह निश्चित हो गया कि मैंने पितरों की जो सेवा किया था वो ठीक किया, आपके आगमन से पता चला, और हमने जो यज्ञ किया था सही किया था। मनुए चाद कुलादि गत मलम, मैं मानता हूं कि मेरे कुल का मल चला गया, इसकी अशुद्धि चली गई और यह पुण्यास्पद हो गया। जो कि श्रीपति आप हमारे घर में आए, हमने शुद्ध दान दिया था, हमने तप किया था, उन सबका फल यह हुआ कि आप हमारे घर में आए। तब भागवत टीकाकार एक बात कहते हैं, श्रीदान के मुख से कहलवा रहे हैं, स्त्री चेत श्याल मनोरमा यदि तथा पुत्रो मुख से नाम रह। यदि किसी गृहस्थ के घर में पत्नी मनोरमा नहीं है, मनोरमा मतलब मन के अनुकूल नहीं है, कर्कशा बोलने वाली है, चाहे ठीक से सेवा नहीं करती है, ऐसी अगर स्त्री हो घर में और पुत्र भी अनुगामी न हो पिता का, और घर गृहस्थी चलाने के लिए पर्याप्त धन न हो और हमेशा घर की चलाने की चिंता बनी रहती हो, तो ऐसे क्लेशमय गृहस्थ आश्रम में कौन रहेगा, यहाँ तक कौन उसका वर्णन करेगा, तो दुखद। वास्तव में मैं नरक इसलिए कहा, नरक नहीं है गृहस्थ आश्रम, लेकिन बहुत ही विकट संकट का स्थान। कब जबकि स्त्री अनुकूल नहीं है, स्त्री मधुर बोलने वाली न हो और पुत्र अनुगामी न हो, पुत्र भी दूसरे मत वाला है, स्त्री भी भिन्न मत वाली है, और धन भी नहीं है, लेकिन यदि साधु के चरण कमल पधारते हैं घर में, यदि साधुओं में पद्मा गमन, साधु को कहा गया है कल्प वृक्ष जैसे हैं, यदि साधु का आगमन घर में न हो और स्त्री अनुकूल नहीं है, वो कल्पसा है, पुत्र अनुगामी नहीं है, धन भी नहीं है, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में कौन रहेगा, कौन उसका नाम भी लेगा, ये बहुत दुखद गृहस्थ आश्रम। परंतु घर में कुछ भी नहीं है पर भगवान के भक्त का यदि आगमन हो घर में तो बहुत बड़ा धन है। उससे दान कह रहे हैं। चाणक्य पंडित का एक श्लोक है कि माता जस गृहे नास्ति और भार्या चाते भाषी अरण्यम तेन गंतव्य यथा गृहम यथारण्यम तथा गृह। जिसके घर में अपनी माँ नहीं है, जो चलिए माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर ये कारण माँ भी नहीं है और जो घर में पत्नी आई है वो भी कर्कशा है, वो भी अप्रिय बात नहीं है, पति से प्रेम से नहीं बोलती है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि घर छोड़कर वन में चला जाए, क्योंकि अब वन में और घर में कोई अंतर नहीं है। जब स्त्री भी प्रेम से नहीं बोलती है और माँ है ही नहीं तो क्या घर में रहना, वन में रहना चाहिए। एक बार एक भक्त ने पूछा था कि जब वन में और घर में अंतर नहीं रहा तो वन में क्यों जाने चाहिए। वो इसका भाई वन में वो शांति से रहेगा, घर में अशांत रहेगा, उससे अच्छा है वन में चला जाए, क्योंकि वन में भी कोई भोजन पका कर देने वाली नहीं है और कोई बात करने वाला अच्छा से नहीं, लेकिन कम से कम चिंता तो नहीं रहेगी ना, भगवान का भजन करेंगे, वन में जल में नहाएंगे, कंदमूल खाएंगे, जीवन धन्य होगा। ये रात दिन की इस कलह में कौन पड़ा रहे, इसके द्वारा यह शिक्षा लेनी चाहिए कि स्त्री का धर्म है कि वो पति से बहुत प्रेम से बोले, ये तो ट्रेनिंग होनी चाहिए लड़कियों को वास्तव में कैसे पति की सेवा करनी चाहिए। कुछ ऐसे वंश होते हैं जिसमें ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती, लड़कियां अपने आप सीख लेती हैं, वंश परंपरा से देखती है कि हमारी माँ अपने पति की, हमारे पिताजी की किस तरह सेवा करती है, तो जहां जाती है तो वो संस्कार इनहेरिट करती है और वो अपने आप करती है। पर किसी में ऐसा न हो तो ट्रेनिंग देना चाहिए, सिखाना चाहिए। कालिदास जी ने लिखा है कविता में, कोई लड़की विदा हो रही है, अपने पति के घर जा रही है, तो उसकी माँ सिखा रही है, बेटी ससुराल जा रही हो तो ये कार्य करना है, पति कहीं से आते हो ऑफिस से या कहीं से तो तुम उनके पैर की आहट पाते ही खड़ी हो जाना, विशेष करने के लिए घर पर। ऐसा नहीं कि सोफा सेट पर पत्नी जी बैठी हैं और पति आकर पानी ढाल कर पी रहे हैं, कर रहे हैं, तो पत्नी किस लिए हुई, ये वास्तव में विचारणीय बात है। तुरंत उठ जाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए और पानी देना, अभ्युत्थान उपागते गृह कतौ, अभ्युत्थान कहते हैं उसको, प्रतिदिन, बल्कि दिन में कई बार पति को रिसीव किया जा सकता है। जो आकर के बाहर चलना मुझे घंटी बजा रहे लगे रहते बेल बजा रहे तो उठ जा रहे खड़ा, ऐसे खोलने के लिए अश्वा मान लीजिए वे चाबी लिए हो की लिए हो खोले तो फिर खड़ा हो जाता है। तो खड़ा हो जाना और उनके लिए आसन लगाना, आसन पहले से भी हो तो देख लेना, झाड़ देना है कुछ भी आकर बैठे, ऐसा करना चाहिए। धीरे धीरे ये सभ्यता लुप्त होती जा रही है, लेकिन कितनी उपाध्याय है, तब भाषणे नम्रता, पति से बोले तो नम्र भाव से बोले, उदंड और एक शासक की तरह नहीं डांटते हुए माँ बोले, क्योंकि पत्नी ही घर में एक ऐसी ऐसा व्यक्ति है जो पति को सुखी कर सकती है, पति गया है बाहर, पता नहीं रास्ते में उसको किसी ने गाली दिया होगा, किसी ने ऑफिस में कुछ कहा होगा, थका मादा एक तो भूख लगी होती है और कहीं मान अपमान हुआ है, तो घर में आकर के पत्नी जब उसका स्वागत करती है तो सब दुख को भूल जाता है। वो तो कहता है इस और वेस्ट होम इज द बेस्ट। ये ठीक है। और आदमी अपने घर पहुंच करके सुख का अनुभव करता है, लेकिन घर का मतलब दुगाव थोड़े हुआ है। घर में पहुंचते ही पत्नी स्वागत करती है, बच्चा प्रेम से बोलता है, वह आ जाता है और रहता है, ये सुख है वास्तव। नहीं तो केवल घर हो और अकेले आदमी आगे खाए पकाए तो भूत भी ऐसा करता है। घर का सुख है पत्नी की अनुकूलता, बच्चे की अनुकूलता, ये सुख है। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि घरों में चीज सुलभ नहीं होता है। पर यहां बताया जा रहा है कि यदि भगवान घर में आवे, भगवान के दास साधु जब घर में आवे तो उसके भाग्योदय होता है। गृहस्थ भाग्योदय होता है, मालाकार कह रहा है सुधा। इस प्रकार भगवान सेवा के भावना के अनुसार, भक्ति के अनुसार तीनों को तीन भाग दिए, बायक को भी दिए। लेकिन वहां पर बायक है, सेवा किया लेकिन उसने माना नहीं कि मैं आपकी और क्या सेवा करूं, तो भक्ति का वरदान वहां नहीं आ पाया है। ऐसे तो धन भगवान ने बहुत दिया, लेकिन सुदाम को धन भी दिया, वंश परंपरा से बढ़ने वाला धन और सब कुछ दिया, और भक्ति दिया, सब कुछ दिया। अब तो भगवान को कपड़ा हो गया, माला हो गई, अब चाहिए चल लगी, तो रास्ते में एक स्त्री मिल गई संदर्भ कर जाते। हाँ सैरम जी कुछ सर, उस कथा को मैं कॉल करूंगा। हरे कृष्ण।